हमारे बहुमूल्य मित्रों को आज रात्रि यहाँ आराधनालय में वापस आकर प्रसन्न हैं। थोड़ा सा गर्म है और इसलिए जल्दी करने का यत्न करेंगे, जितना जल्दी संभव हो सीधे संदेश में चलेंगे। पहले हमारे पास करने के लिए कुछ उद्घोषणाएं हैं और एक विशेष प्रार्थना निवेदन। मुझे आपके पत्र मिले हैं जो कि दिए गए और बहन के लिए, जिसे अनुभव होता है कि उसके मस्तिष्क में फोड़ा है, और एक दूसरा लुईविल में है, और एक दूसरे भाई सेवक का, उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा, और आज संसार में बहुत सारे बीमार लोग हैं, बहुत से बुला रहे हैं, और हम निश्चित हैं कि उनके लिए अपने पूर्ण हृदय से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। प्रायः 95% मेरी सेवकाई सदा यही कि बीमारों के लिए प्रार्थना करूं, आप देखते हैं, परंतु मैं एक प्रकार से मिला, इस प्रकार का एक छोटा सा दृष्टिकोण मिला है कि मैं अब भी रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूं। अब ये स्मरण रखें, ये इसके साथ साथ चलता है, परंतु ओ यदि हम कलीसिया को ले सकें जहां वो सही स्थिति तब स्थिर है और व्यवस्थित क्रम में है, इसलिए हम कार्य कर सकते हैं। आप देखते हैं, व्यवस्थित होना ही है। देखिए, सारी चीजें एक साथ लेकर, किसी चीज ने अभी अभी मेरे हृदय पर प्रभाव डाला कुछ ही क्षणों पहले। ये जब वो पुराना अनुभवी व्यक्ति, उसका एक हाथ लगभग उड़ गया था, पैर लगभग उड़ गया था, इस समय मुझे सुनने के लिए वो अभी आसपास नहीं है, परंतु एक वास्तविक राजकुमार व्यक्ति जिसका नाम रॉय रॉबर्टसन है, और यहाँ कलीसिया में हमारा एक ट्रस्टी भी है और एक भला शानदार मसीही सज्जन पुरुष अभी अभी अंदर आया है और कहा, भाई ब्रणम राष्ट्रपति को मत भूलना। कहा जब उसने कदम उठाया तो इससे मुझे बहुत दुख लगा, टेलीविजन पर हवाई जहाज से उतरते हुए देखा, उसके गालों पर आंसू आ रहे थे और उसका मुंह एक और घुमा हुआ था। आप जानते हैं वो ठीक वहाँ रॉय के साथ था और वे उस युद्ध में, वो युद्ध कोई मतलब नहीं, यदि आप राजनीति में उससे सहमत नहीं हैं, वो तब भी हमारा राष्ट्रपति है। जी हाँ श्रीमान, मेरे लिए मैं ना ही डेमोक्रेट हूँ ना ही रिपब्लिकन हूँ, मैं मसीही हूँ, परंतु मैं आपको बताता हूँ, निश्चय ही राष्ट्रपति ड्विट आइजनहावर की महान सराहना है श्रीमान। मेरे विचारों में निश्चय ही वो एक महान पुरुष है। यदि वो फिर खड़ा होता है और मुझे वोट देनी हो तो मैं उसे फिर वोट दूंगा, ये ठीक बात है। मैं चिंता नहीं करता यदि वो 100 वर्षों का भी हो, मैं फिर भी उसे वोट दूंगा क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। और आज रात्रि हम उसे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। जेटी, मैं निश्चय ही उस अच्छी सभा की सराहना करता हूँ, आप सब, आप और भाई विलाड़ ने इस सप्ताह की। यदि मैं बाहर से भीतर आता तो आप सब कहते ठीक है भाई बर्नम, आप जानते हैं अमुक अमुक, परंतु बाहर खड़े होकर आपको सुनना ये अच्छा था, क्या आप नहीं समझे? ठीक है, इसलिए बहुत ही शानदार। मुझे कुछ कलीसियाओं के लिए कुछ प्रस्ताव मिले हैं, यदि आप सब उन्हें चाहते हैं, यदि अब आप उनकी देखरेख के लिए जाने को तैयार हैं, यदि आपने अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और जो कि मैं विश्वास करता हूं कि आपने पा लिया है और सब तय कर लिया है। मेरे पास एक ओरेगॉन में है, कुछ वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया और एरिजोना और विभिन्न स्थानों में, और यदि आप कभी कोई कलीसिया लेना चाहते हैं या कुछ और, क्यों ठीक यहाँ पर आरंभ करने के लिए अच्छा स्थान है, ठीक यहाँ पर, और हर स्थान में प्राण चिल्ला रहे हैं, यहाँ तक कि इंडियन आरक्षित क्षेत्र में भी, और जहाँ कहीं भी आप जाना चाहें, केवल हमें बताएं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि तुम लड़के अब स्थिर हो गए हो, ये ठीक बात है। उन्हें ये करते देखना मुझे अच्छा लगता है। वहाँ सड़क पर एक भाई रुडेल हैं, कुछ ही दिनों में उसके लिए सभा करने जा रहा हूँ। भाई रुडेल एक बेदारी सभा करने जा रहे हैं, और मुझे स्मरण है, मैं एक छोटे को आसपास हर जगह धक्का लगाया करता था, उसे साज में चढ़ाने का यत्न, प्रचार करने के लिए भेजने का यत्न करता था। वो इतना पिछड़ा हुआ था, वो कहेगा कि बस मैं बात नहीं कर सकता। आपको उसे सुनना चाहिए। देखा, आप कुछ नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं जब तक पवित्र आत्मा आपको अपने अधिकार में ना ले ले, ये ठीक बात है। और भाई ग्राम स्नेलिंग यूटिका में और भाई जूनियर जैक्सन यहाँ पर, हम उन सब को अपनी छोटी कलीसियाएं समझते हैं, ठीक हमारे साथ, हम सब एक साथ हैं। हम अपनी शिक्षाओं पर असहमत नहीं हैं या हमारी आशाएं उद्देश्य हमारी शिक्षाएं एक हैं। हम एक साथ खड़े हैं, सारी बातें एक साथ, हम बस एक ही कलीसिया हैं और निश्चय ही हम चाहेंगे कि सब जगह फैलें। हमारे कुछ अफ्रीका में हैं, कुछ भारत में और चारों ओर देशों में, वहीं जहां हम उन्हें चाहते हैं समाचार फैला रहे हैं। और मैं इन नवयुवकों को आते हुए देखता हूँ, जैसे भाई जेटी परनेल यहाँ है और भाई विलार्ड, और वे जब वे नवयुवक आ रहे हैं जबकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। यदि कोई आने वाला कल है तो कल के लिए वे पुरुष होंगे। मैं नहीं चाहता कि ये संदेश कभी भी मरे, ये नहीं हो सकता, इसे तो जीवित रहना है। और मैं विश्वास नहीं करता कि हमें इसे लाने के लिए अधिक लंबा लेना होगा। वो छोटा बालक जो उन्होंने कहा कि मरने जा रहा है, मैं देखता हूँ कि ये आपके पास सारे दिन रहा। बहन, ये बहुत अच्छा है। हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अनुग्रहकारी, अनुग्रह से भरा है। जो कुछ भी आपको बताया गया है केवल उसी का विश्वास करते जाएं। देखिए, ये ठीक हो जाएगा। अब क्या आप शिक्षा में आनंद ले रहे हैं? आप पढ़ना पसंद करते हैं? मैं वास्तव में सोचता हूँ ये हमारी भलाई करता है। ये बीमारों के लिए प्रार्थना करने से कुछ थोड़ा विश्राम देता है और दर्शन और दिव्य चंगाई स्वाभाविक। अब आज रात्रि हम सभा के पश्चात आज रात्रि हम फिर से बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सदा ये करना चाहते हैं, किसी को भी किसी समय बपतिस्मा देना चाहते हैं। कितनों को याद है जब विद्युत के तारों की लाइन के साथ साथ चलता था? अच्छा, मैं विद्युत के तारों के साथ ठीक मध्य में चला। बहुत सी बार जंगल में होते हुए एक दिन में 30 मील चलना पड़ता था। मेरे पास चलने के लिए 280 मील थे। मैं उसमें से होकर जाऊंगा, कमीज मेरे हाथों में, और वो इतना थका हुआ उन जंगलों के बीच चल रहा था। और हरी कटीली झाड़ियों का काटना, किसी बूढ़े किसान से मिलता और पेड़ के तले बैठकर उससे बातें करता यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के विषय में। वो कहता, अच्छा, मैं तो हमेशा बपतिस्मा लेना चाहता था। मैंने कहा, ये सोते की धारा से अधिक दूर नहीं है। और वो कहेगा, और मैं तो उनमें से बहुतों को वहाँ ले गया और यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। ठीक पंक्ति पर लेता जितने यत्न से मैं जा सकता था। ये ठीक बात है। बहुत सी बार अपने काम के कपड़ों में बपतिस्मा दिया, सीधे खंभे पर से उतर करके वहाँ खंभे के पार तय कर लेता। मैं लाइनमैन भी था। वहाँ खंभे पर एक व्यक्ति के साथ कार्य कर रहा था, उससे प्रभु के विषय में बात कर रहा था। वो कहेगा, क्यों बिली, इन्हीं दिनों में मैं तुम्हारी कलीसिया में आऊंगा और बपतिस्मा लूंगा। मैं कहता, क्यों तुम इतने समय तक क्यों प्रतीक्षा करते हो? हम ठीक नदी के पास हैं, वहाँ बहुत सारा पानी है, उन्हें अभी पकड़ लो। ये ठीक बात है, यही समय है। फिलिपुस ने कहा, खोजे ने फिलिपुस से कहा, यहाँ पानी है, हमें क्या रोक सकता है? ये ठीक बात है, कोई नहीं। यदि आप तैयार हैं, यही समय है। शैतान को अवसर ना दो कि वो वहाँ कुछ पच्चड़ घुसा दे। आज जो आप कर सकते हैं उसे कल के लिए ना छोड़ें। संभव है आपके लिए कल ना आए। मुझे एक बार स्मरण है, मैंने ये किया और सीखा, मुझे एक पाठ सिखाया। मैंने किसी चीज को जो मुझे आज करना था कल पर टाल दिया और अगले दिन बहुत देर हो गई। अब सही में मैं आप लोगों को सारे समय नहीं रोकना चाहता, परंतु मैं इतना अधिक थक गया था और मैं नहीं जानता, मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा था, यहाँ तक कि मैं अपने आपे में नहीं था। मुझे इतना अच्छा प्रतीत हो रहा था। इसके पहले कि हम वचन पर जाएं, हम अब एक क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, तू जीवित परमेश्वर है, सदा जीवित। वो सूर्य जब अभी अभी अस्त हुआ है, उसी सूर्य को डेनियल ने अस्त होते देखा, यर्मिया ने इसे अस्त होते हुए देखा, आदम ने इसे अस्त होते देखा, यीशु ने इसे अस्त होते देखा। और यही वो संसार है जिसमें उन्होंने जीवन बिताया और इसमें चले फिरे, और आप आज भी वैसे ही परमेश्वर हैं। आज रात्रि बहुत से निवेदन हैं। एक मनुष्य जिसके मस्तिष्क में फोड़ा है, एक बहन को भी उसी चीज का भय है। प्रभु, केवल आप ही आशा हैं यहाँ इसके लिए। वो फोड़ा अब कैंसर में बदल रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ये डॉक्टरों की पहुँच से बाहर है। परंतु आज रात्रि हम अपने छोटे गोफन के साथ आते हैं मेमने के पीछे, कि इसे पिता के झुंड में वापस ले आए। प्रभु यीशु के नाम में हम अपनी प्रार्थना को निर्देशित करते हैं कि सिंह को मार डाले, फोड़े को, कैंसर, उन्हें सुरक्षित झुंड में ले आए। और परमेश्वर हम अपने प्रिय राष्ट्रपति को स्मरण करते हैं, हमारा भाई ड्विट आइजनहावर। प्रभु, उसने राष्ट्र की अगुवाई की है, वो हमें युद्ध से बचाना चाहता है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो कोरियन युद्ध को समाप्त कर देगा यदि वो इसे किसी प्रकार से कर सकेगा। उसने उन माताओं से प्रतिज्ञा की है, वो उन लड़कों को वापस ले आएगा। परंतु उसने कहा है, मेरे लिए ये करना मैं इसे नहीं कर सकता, मैं अपने प्रयत्न करूंगा, परंतु केवल परमेश्वर ही इसे करेगा। और आप उसके साथ थे प्रभु, और अब ये सब तय हो गया। वे इसे पहली बार में ही क्यों ना देख सके। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसकी सहायता करेंगे। प्रभु, उस योद्धा प्राण को आशीषित करें। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो अगला है, उस नेता को आप हमारे लिए चुनेंगे। आपका पहले से ठहराना हो जाएगा प्रभु, परंतु वो जिसमें आज रात्रि हमारी रुचि है, अपने राष्ट्रीय मामलों को छोड़, वो महान महिमा युक्त, वो जो अपना राज्य स्थापित करने आ रहा है, जिसका कि अंत ना होगा, प्रभु यीशु, तेरा पुत्र। वे हथियारों को टिका देंगे, टेप में से आवाज आएगी और फिर युद्ध ना होंगे। वे दाख की बारी लगाएंगे और उसमें से फल खाएंगे, वे घर बनाएंगे, उसमें बसेंगे, और वहाँ फिर कभी इसके बाद दुख नहीं होंगे। अब हमें आशीषित करें, हम आपके वचन की ओर बढ़ते हैं। और पिता, आप कारण जानते हैं कि मैं इस वचन से जो यहाँ है आपके वचन की ओर बढ़ रहा हूँ। ये इसलिए है क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि आप मुझसे इसी प्रकार से करवाना चाहते हैं। ये आपकी दिव्य इच्छा है, ये आपकी आज्ञा में है। ये आज का कार्यक्रम है कि लोग अपने सही स्थान को पालें और युद्ध की घड़ी के लिए तैयार हो जाएं। जैसे कि हमारे भाई ने अपनी प्रार्थना में कहा कि आप अधिक समय नहीं हुआ, ओ आपने हमें लंबे समय तक प्रशिक्षित किया है प्रभु। अब पिता, हमें अपना पद दें, हमें वहाँ पर रखें जहाँ कि हमें करना है, ताकि हम अपने पिता के कार्य पर हो सकें। क्योंकि हम ये यीशु के नाम आपके पुत्र के द्वारा मांगते हैं, आमीन। आज दोपहर बाद बहुत ही शानदार समय रहा, लुविल के प्रसिद्ध डॉक्टर और उसकी नर्स से बातें कर रहा था। उन्होंने प्रभु की शानदार बातों के विषय में सुना, और उस महिला के पिता डॉक्टर थे, और वो आकर अधिकांश दोपहर बाद मेरे कमरे में बैठती, बस आकर रुकती है। एक शानदार व्यक्ति, बल्कि थोड़ी सी कठोर, आप जानते हैं, एक प्रकार की विश्वासी, आरंभ से ही एक वास्तविक प्रेस्बिटेरियन, परंतु जब गई तो उसके गालों पर आंसू थे। ओ, मैं परमेश्वर ने उन्हें पकड़ लिया, चाहे जहाँ भी हो, डॉक्टर के कार्यस्थल पर, नर्सों के, मैं विश्वास करता हूँ एक नर्स नॉर्टन इन्फर्मरी अस्पताल में है। उसके पवित्र आत्मा पाने के लिए मैंने गवाही नहीं दी और उससे कहा यदि वो यीशु के नाम में बपतिस्मा लेती। वो डॉक्टर नहीं जिसके संपर्क में मैं आया हूँ कहीं भी या कुछ, समझे। इन्हें इस विषय में बताया, भाई हमारे पास अधिक समय नहीं है, कोई मतलब नहीं कि ये हमें कितना भी कठिन लगे, जब तक आप अपनी अंतिम सांस ना ले लें और देखें तब आप चाहेंगे आपको इसे कर लेना था। जी हाँ, उस समय तक प्रतीक्षा ना करें, हम इसे अभी कर लें, यही समय है। ओ, वो असहमत हो सकते हैं और क्रोध और झगड़ा इस विषय में थोड़ा सा हो सकता है, परंतु उनका ऐसा अर्थ नहीं होता, वे वास्तव में ऐसा नहीं करते, वे ठीक हैं। जब वे आपसे विवाद करते हैं, केवल स्मरण रखें, उनका वास्तव में ये अर्थ नहीं होता, उनका ऐसा मतलब नहीं होता। संभव है उन्हें इसी प्रकार से सिखाया गया है और वे उसी के बने हुए हैं, इसलिए आप उनके विचारों को देख सकते हैं। उनसे झगड़िए मत, किसी के साथ झगड़ा ना करें, केवल उनसे प्रेम करें, तब उनके लिए प्रार्थना करें। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि हम 19वें पद को ले, मैं निश्चित नहीं हूँ, तीसरे अध्याय से ये लंबा पड़ेगा, है कि नहीं श्रीमानो? ओ, ये मेरे लिए चट्टान में मधु जैसा है। स्मरण रखें, अब हम बोल रहे हैं, इसलिए हम इसकी छोटी सी भूमिका फिर ले सकते हैं। और अब भाई नेविल, आप मुझे थोड़ा सा खींच देना यदि मैं जाने के समय को ना देख सकूं, ताकि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकूं। हम हर छोटे बिंदु को लेना चाहते हैं जो हम ले सकते हैं, और आज रात्रि मैं वेदी की बुलाहट को चाहता हूँ। मैं इस पर समाप्त कर रहा हूँ, जिससे कि मैं बाकी को केवल इसको पढ़ने के योग्य हो जाऊँ। परंतु इसका उद्देश्य आपकी स्थिति को मसीह में देखना है। इसको देखते हुए ऐसा कुछ नहीं है कि आप केवल इसमें ठोकर खाओ या ऐसा कुछ जिससे कि आप कहीं के लिए योग्य हो गए हैं, परंतु ये वो है जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है स्वयं ही। ये नहीं कि आप बहुत अच्छे थे कि आप एक रात्रि कलीसिया में गए, कोई बेचारा भाई आपको वेदी तक ले गया, और ये वो नहीं था, ये परमेश्वर था। संसार के रचने से पहले आपको अनंत जीवन के लिए ठहराया। जब उस दिन आप वहाँ गए, कोई आश्चर्य नहीं कि 24 प्राचीनों ने अपने मुकुट उतार दिए, प्रत्येक ने अपने मुकुट उतार दिए और हरेक ने गिरकर मुंह के बल दंडवत किया। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, कोई प्रचारक, कोई प्राचीन, कुछ नहीं। सारी महिमा मेमने को। उस दिन परमेश्वर उसमें सब कुछ एकत्र करेगा। ओ, यदि हम कभी जान और पहचान सकेंगे कि वो कौन था जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। अब हम आठवें पद से आरंभ करते हैं ताकि थोड़ी भूमिका ले लें, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, अपनी इच्छा का भेद उस सुमिति के अनुसार हमें बताया, अपनी इच्छा के भेदों को। और स्मरण करें कि हम उस पर कैसे रुके रहे इस प्रातः, कितने वहाँ पर थे, जरा देखें। हम उस पर कैसे टिके रहे, उसकी इच्छा का भेद। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, तब ये भेद है। परमेश्वर की इच्छा एक भेद है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने लिए उसकी इच्छा को मालूम करना चाहिए। परमेश्वर का भेद हम कैसे ढूंढते हैं? पौलुस, उसे ये मालूम था। उसने कहा, उसने किसी मनुष्य मांस और लहू से सलाह ना ली, वो किसी विद्यालय में नहीं गया, कोई धार्मिक विद्यालय नहीं, उसका इससे कोई वास्ता नहीं था, परंतु वो उस पर यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशित किया गया, जो उसे दमिश्क की राह पर मिला था, ज्योति में अग्नि स्तंभ के समान, और इसने उसे पुकारा और वो अरब को चला गया और वहाँ 3 वर्षों तक रहा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कुछ समय था भाई इगन? 3 वर्षों तक पौलुस अरब में था, कहीं किराए के मकान में इधर उधर बेचैनी से चल रहा था, उन पुराने लेखों के साथ। उनके पास नए वाले नहीं थे, उनमें से अधिकांश पौलुस ने लिखे। इन पुरानी लिपटी हुई पुस्तकों में कैसे परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए ठहराया, कैसे वो यीशु को भेजेगा कि उसके बलिदान के द्वारा हम सबको जीवन के वृक्ष का अधिकार मिल जाए। जिनको उसने पहले से जाना उसने उन्हें बुलाया, जिन्हें उसने बुलाया उसने उन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें पहले ही महिमामय किया। परमेश्वर ने संसार के आरंभ से हमें लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया है। अब सारी सृष्टि कर्रा रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। मैं कल्पना करूंगा पौलुस का अद्भुत समय रहा होगा, मैं उसके साथ वहाँ होना पसंद करूंगा, क्या आप नहीं करेंगे? अब उसने कहा, उसने अपना भेद हम पर प्रकट किया। आपके ऊपर किसी समय पवित्र आत्मा उतरेगा और उससे चलाना आरंभ करेगा, और केवल ध्यान दें कि वो कैसे जाता है। इस दोपहर पश्चात मेरे पास अध्ययन के लिए 30 मिनट थे, केवल पाठ को देखा, संभवतः नहीं, मैं कहूंगा कि उसका आधा समयों के मध्य में केवल 15 मिनट। मुझे भागना था और मैंने सोचा भेद कितना भेदपूर्ण है, और पवित्र वचन मुझे पुराने नियम में वापस ले गया, तब वापस नए नियम में लेकर आया, किसी बात को बांधा। देखिए, उसके आने का भेद, उसकी इच्छा का भेद, हमारे एक साथ बैठने का भेद। स्मरण रखें, ये किसी धार्मिक विद्यालय में पढ़ाया नहीं जा सकता, ये एक भेद है। आप इसे शिक्षा और धर्म ज्ञान से नहीं जान सकते। ये वो भेद है जो जगत की उत्पत्ति से पहले छिपा हुआ है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रहा है। मुझे बताएं मेरे भाई, मेरी बहन, मुझे बताएं कि इस समय को छोड़ कौन सा समय था कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हुए। इतिहास में वो समय कब रहा कि सारी सृष्टि को छुड़ाने का समय प्रकट हुआ। प्रकृति प्रकृति स्वयं तड़प रही है, समय के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्यों पहले इसके की छुटकारा किया जाता, इसके पहले की पवित्र आत्मा उंडेला जाता, पुराने नियम के पहले वहाँ प्रगटीकरण नहीं हो सकता था। इसे तो इस समय तक प्रतीक्षा करनी थी। अब सारी चीजें लाई गई हैं, आ रही हैं, चोटी के पत्थर के रूप में बदल रही हैं, परमेश्वर के पुत्रों को वापस आने का प्रगटीकरण हो रहा है और परमेश्वर का आत्मा इन मनुष्यों में इतनी सिद्धता से आ रहा है, जब तक कि उनकी सेवकाई मसीह के समान ना हो, जब तक ये उनके साथ और उसकी कलीसिया के साथ मिलकर ना जुड़ जाएगा। कितनों ने पैरामिड के इतिहास का अध्ययन किया है? मैं समझता हूँ कि एक महिला ने अपना हाथ उठाया है। ठीक है, परमेश्वर ने तीन बाइबलें लिखी हैं, उनमें से एक आकाश में राशि चक्र में, ये पहली बाइबल है। मनुष्य ये अनुभव करने के लिए ऊपर देखना था कि परमेश्वर ऊपर से है। राशि चक्र को देखें, क्या आपने इसका कभी अध्ययन किया है? यहाँ तक कि ये हर युग को दिखाता है, यहाँ तक कि कर्क युग, ये आरंभ को दर्शाता है, मसीह का जन्म। राशि चक्र में पहला चित्र क्या है? कुंवारी। अंतिम चित्र क्या है? लियो, सिंह। मसीह का पहला और दूसरा आगमन, ये सब वहाँ पर लिखा हुआ है। तब अगली बाइबल पत्थरों में लिखी गई, पिरामिड कहलाई। परमेश्वर ने पिरामिड में लिखा। यदि आप उनका अध्ययन करें, पुराने इतिहासों और युद्धों को देखें कि वे कैसे बाढ़ के विनाश के पहले निर्मित किए गए थे। तीसरी कागज पर लिखी गई बाइबल, उस महान तेज बुद्धिमान आने वाले संसार के लिए। अब जैसे कि परमेश्वर युगों में से होते हुए निकला, हम लियो सिंह पर हैं, हम पैरामिड के ढकने पर हैं, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हैं, अंतिम अध्याय पर। विज्ञान कहता है हम मध्य रात्रि के 3 मिनट पहले हैं। ओ सोचिए कि हम कहाँ पर हैं। और ध्यान दें, हम पैरामिड को लें, ये सरल है, ये एक त्रिकोण के समान चलता है। जब हम यहाँ कलीसिया के आरंभिक युग के आरंभ में थे, लूथर के समय में, सुधार के पश्चात, एक मनुष्य का ये कहना कि वो एक मसीही था तो ये उसके लिए जीवन या मृत्यु था। वे उसे इसलिए मार डालते थे क्योंकि यदि उसने ये भी कह दिया कि वो एक मसीही था, इसलिए अत्याचार में से निकले। प्रत्येक युग हर समय में होते हुए अत्याचार रहा है। वे सब जो मसीह यीशु में भक्ति का जीवन व्यतीत करते हैं सताए जाएंगे। लूथर के युग में एक लूथरन हूँ ये कहना एक भयानक बात थी। आपको सन की समझा जाता था और मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था। बहुत सी बार वे उन्हें जीवित जलाकर मार डालते थे, उन्हें जलाया और लूथरनों के लिए बहुत कुछ। तब कलीसिया सक्रिय हो गई, जैसे कि पिरामिड। तब ये अनुग्रह के दूसरे कदम पर आई, जो कि पवित्रीकरण था। वेसरी का समय, जब उसने एंग्लिकन कलीसिया का विरोध किया, पवित्रीकरण को सिखाया, ये फिर से अल्पसंख्यक हो गई। तब वे फिर सनकियों का झुंड कहलाए। ये कितने हैं जो मेथोडिस्ट थे या हुआ करते थे या किसी समय में मेथोडिस्ट कलीसिया से जुड़े हुए थे? आप में से आधे। क्या आप जानते हैं कि मेथोडिस्ट कलीसिया में एक समय लगभग पवित्र आत्मा था? मैं मेथोडिस्ट की कलीसिया में गया हूं और उन्हें फर्श पर पड़े हुए देखा है। उनके मुख पर पानी फेंका जाता और उन्हें पंखा किया जाता, पवित्र आत्मा को उस पर आने से रोका जाता। ये ठीक बात है, अब ये सत्य है। वहाँ पर कैंटिकी के पहाड़ों में, जहाँ हमारे यहाँ मेथोडिस्ट थे, तुम लोग वहाँ कलीसिया में सम्मिलित होने वाले थे। हमारे यहाँ वे मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट थे। हम वेदी पर पहुंचते और एक दूसरे की पीठ पर मारते जब तक कि हमें कुछ मिले। हम उसमें से होकर निकले, इसके बाद हमने भिन्न रीति से जीवन बिताया। परंतु आप लोग बस आए और अपने नाम पुस्तक में चढ़वाए और कहा मैं एक मेथोडिस्ट हूं और एक नमकदानी लेकर उसमें से थोड़ा सा पानी आपके ऊपर छिड़क दिया और ये सब कुछ हो गया। बाहर जाकर छोटे छोटे वस्त्र पहने, सिंगार किया, घुड़दौड़ की शर्त लगाई, जुआ खेला, सिक्का डालकर गाने सुने और सब कुछ किया, फिर भी अच्छे मेथोडिस्ट। देखा, ये मेथोडिस्ट नहीं है, ये तो केवल कलीसिया के सदस्य बनने वाले हैं। ये ठीक बात है। बैप्टिस्ट भी इसी प्रकार से, प्रेस्बिटेरियन भी इसी प्रकार से, जैसे कि डेविड डुप्लेसिस ने कहा, पर पोते पोतियां, परमेश्वर के पास कोई पोते पोती नहीं है। परमेश्वर के पास कभी भी पोते पोती नहीं हुए, उसके पास पुत्र हैं परंतु पोते नहीं। ये ठीक बात है। आप और लोग जो मेथोडिस्ट कलीसिया में आते हैं या पेंटिकॉस्टल कलीसिया में या बैप्टिस्ट कलीसिया में, क्योंकि उनके माता पिता पेंटिकॉस्टल थे या बैप्टिस्ट, तो आप एक पोते हुए, वे पुत्र थे, आप पोते हैं। देखा, इसलिए परमेश्वर के पास ऐसा कुछ नहीं है। कलीसिया के पास ऐसा बहुत कुछ है, परंतु नहीं, वो नहीं, परमेश्वर के पास नहीं है। अब ध्यान दें, ये जब तक ये आगे बढ़े, अब जैसे कि ये अल्पसंख्यक ना हो जाएं, वो कलीसिया पेंटिकॉस्टल युग भीतर आया, जिसने कि निश्चय ही उबड़ खाबड़ को बराबर कर दिया। तब इसने क्या किया? इसने मेथोडिस्ट और लूथरन को पीछे छोड़ दिया। अब पवित्र आत्मा की चलने की दिशा पेंटिकॉस्टल युग से दूर जाने लगी। उन्होंने क्या किया? वे संस्थागत हो गए, स्वयं को बना लिया। हम असेंबली ऑफ गॉड हैं, हम वननेस हैं, हम टूनेस हैं, हम चर्च ऑफ गॉड हैं, हम ये वो हैं। आप हम में से नहीं, आप स्वर्ग तक नहीं जा सकते जब तक कि आपका नाम हमारी पुस्तक में ना हो। ओ, ऐसी निरर्थक बात। मैं चिंता नहीं करता कि यदि आप बैप्टिस्ट मेथोडिस्ट प्रेस्बिटेरियन हैं, आप अपना नाम जीवन की पुस्तक में तब लिखते हैं जब परमेश्वर उसमें लिखता है। यदि आप अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए हैं, परमेश्वर आपको किसी भी प्रकार से बुलाएगा, कैसे भी, ऐसे या वैसे, वो निश्चय ही बुलाएगा। वो सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। कोई मतलब नहीं आप कौन सी कलीसिया से संबंधित हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु नामधारी आपके साथ एक भी नहीं करेंगे, परंतु बहुत सी रुकावट डाल सकते हैं कि परमेश्वर के संग ना चलें, परंतु ये कभी भी कुछ ना नहीं करेगा। आपको विश्वासियों और अविश्वासियों के संग एकत्र करेगा। ठीक है, आप उस पर जहाँ कहीं जाते हैं प्रहार करते हैं, और ये यहाँ तक कि स्वर्ग में है, इसलिए ये ठीक है। परंतु आप अपने नामधारी की ओर देख रहे हैं, यीशु को देखें, वही है जिसे देखना है। अब जैसे कि हम बढ़ते जा रहे हैं उनके पास, कितने, मैं विश्वास करता हूं कि इस महिला ने अपना हाथ उठाया है कि इसने पिरामिड का अध्ययन किया है। आप जानते हैं कि पिरामिड पर कभी भी कोई चोटी का पत्थर नहीं रखा गया। क्या था? इस पर कभी भी चोटी का पत्थर नहीं रखा गया। वे इसे पा भी नहीं सके। वे नहीं जानते कि इसका क्या हुआ। क्यों? इस पर चोटी का पत्थर क्यों नहीं रखा गया? चोटी का पत्थर, इसका शीर्ष, क्योंकि जब वो आया तो उसको अस्वीकार कर दिया गया। वो अस्वीकार किया हुआ पत्थर था, ये ठीक बात है, परंतु ये ढांका जाएगा, ये ठीक बात है। और तब वे पत्थर जो चोटी के पत्थर के चारों ओर लगे थे, उन्हें पत्थर होना है जो कि उस पत्थर के समान पूर्ण होंगे, जो जोड़ में ठीक बैठे और हर ओर से। पिरामिड इतना सिद्ध है कि आप उनके मध्य में ब्लेड भी नहीं घुसा सकते जहां वे पत्थर आपस में जुड़ते हैं। बहुत सुंदर कारीगरी। उनमें से कुछ सैकड़ों टनों वजन के हैं हवा में, और इतनी सिद्ध रीति से आपस में बैठाए गए हैं। परमेश्वर इसी प्रकार से अपनी कलीसिया को ला रहा है। हम एक दूसरे के संग ठीक प्रकार से सही जुड़े हुए हैं, एक हृदय, एक संगति। अब कोई कहता है, अच्छा, लूथरन जो पहले थे उनके पास कुछ नहीं था, क्या आप इसका विश्वास नहीं करते? लूथरन पुनरुत्थान में वैसे ही आएंगे जैसे बाकी पुनरुत्थान में आएंगे। बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और परमेश्वर के सारे बालक उस पुनरुत्थान में आएंगे। और यही कारण है कि लोग आज कहते हैं, ओ अच्छा, एक जोरदार बेदारी होगी जो यहाँ होगी और करोड़ों पेंटिकॉस्टलों को बचा लेगी, वे बच जाएंगे और आकाश में उठा लिया जाना होगा। आप गलती कर गए। वो आकाश में उठाया जाना सैकड़ों हजारों का होगा, ये ठीक बात है, परंतु वो उद्धार के 6000 वर्षों का भी बना होगा, पिछले 6000 वर्षों का। जैसे ही ज्योति मनुष्य के पास आती है, मनुष्य ज्योति में चलता है, वो पुलों को पार करता है जब वो उसके पास आता है। अब यदि वो इसे अस्वीकार कर दे तो वो अंधकार में छूट जाता है, परंतु यदि वो बढ़ता रहता है, अब ध्यान दे, तब प्रभु यीशु का आगमन इतना समीप होता है जब तक कि आत्मा यहाँ नीचे से न्यायोचित ठहरना, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्पष्ट रूप से, और अब ठीक चोटी के पत्थर के आने के समय में कलीसिया को मसीह के समान इतना सिद्ध होना है जब तक कि कलीसिया और मसीह एक साथ ना जुड़ सकें, एक ही आत्मा। और यदि मसीह का आत्मा तुम में है तो ये आत्मे मसीह का जीवन बनाता है, मसीह के जीवन का व्यवहार मसीह का कार्य करता है। वो जो मुझ पर विश्वास करता है तो जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा, यीशु ने ये कहा है, समझे? अब हमें भी मिलने जा रहा है, हमारी एक सेवकाई है जो आ रही है, जो बिल्कुल ठीक मसीह के जीवन के समान है। वो सेवकाई क्या प्रमाणित करती है? प्रभु का आगमन। आज इस संसार में देखिए और ध्यान दें कि क्रुश्चेव क्या कह रहा है। ये सारी महान बातें और महान विश्वव्यापी संघर्ष ठीक सामने है, किसी भी समय किसी सेकंड ये राख में बदल जाए, ये ठीक बात है। और यदि वो हम ये जानते हैं ये बंद है, कोई भी समझदार व्यक्ति अखबार में पढ़ सकता है या रेडियो को सुने और जानते हैं कि ये सब समाप्त हो गया। अच्छा, स्मरण करें, मसीह अपनी कलीसिया के लिए आ रहा है इसके पहले कि ये घटित हो। इसलिए प्रभु यीशु का आगमन कितना समीप है। संभव है कि ये सभा आज रात्रि समाप्त होने से पहले, हम अंत समय में हैं, निश्चय ही सत्य है। कलीसिया पर ध्यान दें, जैसे कि ये आ रही है, जैसे कि ये बढ़ रही है। इसे जरा अपने मस्तिष्क में लें, आप इतिहासकार लोग जो इतिहास का अध्ययन करते हैं। न्यायोचितता की अधीनता में लूथरन कलीसिया को देखें, कैथोलिकवाद अभी अभी निकल कर आई है, उसके बढ़ने को देखें, तब वेस्ली की ओर देखें और समीप आ रही है पवित्रीकरण में से, वचनों में बैठ रही है। सीधे इसके मध्य में देखें वेस्ली, तब अगली चीज जो आई पेंतिकोस्तल युग था, और पेंतिकोस्तल युग वरदानों का वापस आना था, आत्मिक वरदानों का। अब आने वाले युग को देखिए, अब सीधा चोटी के पत्थर तक। देखिए मेरा क्या अर्थ है, प्रभु के आगमन का मालूम होना। परमेश्वर और सारी सृष्टि कलीसिया के लिए प्रतीक्षा कर रही है कि अपने सही स्थान को पाले। आज की परेशानी में प्रत्येक जिससे मैं मिला बहुत समीप है। मैं बाहर चला गया, हम ले रहे थे, मुझे अपना शारीरिक परीक्षण करवाना था। आप जानते हैं यदि हम विदेश जा रहे हैं, आप मिशनरी और आदि आदि ये जानते हैं। जब मेरा परीक्षण किया जा रहा था तो वे मुझे वहाँ कमरे से बाहर लाए। मैंने पुराना वो पी रहा था जो मुझे लपसी सा दिखाई पड़ता है या कुछ ऐसा, और मैं उसे पी रहा था और वहाँ बाहर आकर बैठ गया। आधे घंटे तक प्रतीक्षा करी और देखा कि ये मेरे आमाशय से बाहर आया कि नहीं। मैंने वहाँ उस पार देखा और वहाँ कोई छोटी महिला थी और ऐसी लग रही थी कि मरने वाली है। वो इतनी छोटे छोटे पैर और छोटे छोटे हाथ, और मैं इस व्यक्ति से उस व्यक्ति के पास घूम रहा था, इस व्यक्ति से उस व्यक्ति के पास और महिला के समीप आ रहा था, जब तक कि मैं वहाँ नहीं आ गया जहाँ वो थी। वो बेचारी छोटी चीज ऐसी लग रही थी कि मरने पर थी, और मैं उसके समीप आ गया। मैंने कहा, महोदया जी मुझे क्षमा करें। उसने कहा, आप कैसे हैं? ओ, वो बहुत बीमार थी। और मैंने कहा, क्या गड़बड़ है? उसने कहा, मैं ट्यूशन अपनी पुत्री से मिलने गई थी, मैं बीमार हो गई, वे समझ नहीं सके कि क्या बात है। मैंने कहा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं सुसमाचार प्रचारक हूँ, क्या आप मसीही हैं? क्या यदि वो घड़ी आएगी तो आप जाने के लिए तैयार हैं? और उसने कहा, मैं अमुक अमुक कलीसिया से हूँ। मैंने कहा, प्रश्न ये नहीं था जो मैंने आपसे पूछा, क्या आप मसीही हैं, परमेश्वर के आत्मा से भरी हुई और जाने के लिए तैयार हैं जब वो आपको बुलाता है? वो महिला यहाँ तक कि समझ ही नहीं सकी कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। देखा, ओ आज संसार कितनी दयनीय स्थिति में है। अब हमें उसकी इच्छा का भेद बताया गया, उभर रहा है। मैं आपको कुछ पढ़ दूं। अब मैं पढ़ रहा था, अब हम उसकी इच्छा के भेद उसकी ओर घूमे। हम यहाँ एक मिनट के लिए इब्रानियों को निकालें। इब्रानियों का सातवां अध्याय, मैं विश्वास करता हूँ यही है, और मैं आपके लिए कुछ पढ़ूंगा जिससे आपको अच्छा अनुभव होगा। जब हम इसके लिए सोचते हैं, हमें एक साथ मिलकर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। इब्रानियों सातवां अध्याय, ये मेलकीसदक, अब ध्यान दें, शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक। अब क्या भेद है, यहाँ पर भेद है, इस पर ध्यान दें। ये व्यक्ति कौन है, जान रहे हैं उसकी इच्छा का भेद। ये मेलकीसदक, मैं यहाँ प्रत्येक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अभी भी बाइबलें पलटी जा रही हैं। इब्रानियों सातवां अध्याय, पौलुस बोल रहा है, वही गलतियों वाला व्यक्ति। ये मेलकीसदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम का राजा। ये व्यक्ति कौन है जो कि शांति का राजा है जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है। ये मनुष्य कौन था? ये कौन था? उसके पास कभी भी पिता नहीं था, उसके पास कभी भी माता ना थी, उसका कभी भी आरंभ ना था, न ही कभी समय का अंत था, वो कभी ना मरेगा। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा आता था, उसने इससे भेंट की। वो क्या कर रहा था? वो लूत को छुड़ाने गया था, उसका खोया हुआ भाई, कि उसे वापस लाए। और उसने राजाओं को घात किया, जो कि वे राजा मारे गए थे, मैं विश्वास करता हूँ 10 या 15 राजा और उनके राज्य। परंतु इब्राहिम ने अपने दासों को हथियार दिए और उसके पीछे पीछे गया, स्वयं को रात्रि में अलग किया। देखिए, उसने उसे कब पकड़ा? रात्रि के समय। ओ भाइयों, अब हम अंधकार में कार्य कर रहे हैं, हमारे पास केवल एक ही ज्योति है, सुसमाचार की ज्योति। परंतु उसने स्वयं को अलग किया और उसे पकड़ा और उसे वापस लाया। और वापस आते समय जब युद्ध समाप्त हो गया, चलिए उत्पत्ति 14 में चलें, एक मिनट कहानी को और स्पष्ट ले लें। चलिए हम उत्पत्ति में चलें, चौथे, मैं विश्वास करता हूँ ये 14वां, उत्पत्ति 14। हाँ, हम उत्पत्ति 14:18 से आरंभ करें। हम इसके थोड़ा सा पहले से आरंभ करें, हम आरंभ करें, हाँ, 18वां पद, उत्पत्ति 14:18। और मलकीसिदक, अब ये इब्राहिम राजाओं को मारकर लौट रहा है, वापस आया अपने मार्ग पर, वापस लूत को वापस ला रहा है, सारे लोग जिन्हें ले गया था, दाऊद के समान, जिसने जाकर और अधिकार, दाऊद ने क्या किया? छोटी सी गोफन ली, जाकर सिंह के मुख से उस छोटे मेमने को छुड़ा लिया। गोफन के विषय में सोचिए, मेमने के पीछे जा रहा है। संसार में ऐसा कौन करेगा? मुझे बताएं, यहाँ कौन मनुष्य ऐसा करेगा? अपना हाथ उठाए, मैं आपको एकदम बताऊंगा कि आप गलत हैं। आपने मुझे उठाए हुए नहीं देखा? नहीं, मैं उसके पीछे 306 लेकर नहीं जाऊंगा कठिनता से। परंतु वो उसके पीछे गोफन के साथ गया, चमड़े के समान एक छोटा टुकड़ा, जिस पर दो रस्सियां बंधी हैं, लपेट कर पकड़ी हुई, क्योंकि और जब गोलियत की डींग मारने का समय आया, तो वो गोलियत के पीछे गया और उसने कहा, स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे एक मेमने को सिंह के मुंह से छुड़ाने दिया, भालू के मुख से। वो जान गया कि ये गोफन नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ जो उसके साथ गई थी। ये वही था जो मेमने को वापस लाया। और हम आज यही कहते हैं, परमेश्वर दाऊद के आसपास ही है, जिया श्रीमान, जो कि पिता की भेड़ को खाना खिलाता है। और यदि कभी फोड़ा आएगा या एक कैंसर आएगा या कुछ भी, और सीधा डॉक्टर के हाथ में से कूद पड़ेगा, ये उस दाऊद को नहीं रोकेगा, वो ठीक उसके पीछे पीछे जाएगा उस छोटी गोफन के संग। मेरे नाम से कुछ भी मांगो, ये दिया जाएगा। मैं चिंता नहीं करता कि डॉक्टर हंस सकता है और हर कोई उसका उपहास उड़ा सकता है, जो भी है, वो उसके पीछे जाएगा, उस भेड़ को झुंड में वापस लाएगा। जी हाँ श्रीमान, वो परमेश्वर का बालक है, उस पर से अपने हाथ हटा ले। इस सिंह को गिरा दिया, तब सिंह फिर से उठा, उसने उसे दाढ़ी से पकड़ा और उसे मार डाला। एक छोटा साधारण सा लड़का, संभवतः 80 या 90 पाउंड का। ध्यान दें, मलकीसदक शालेम का राजा, जो कि शांति का राजा है, वास्तव में जो कि उस पहाड़ के पार है, ये यरूशलेम का राजा है। ये कौन था? यरूशलेम जो कि पहले शालेम का कहलाता था, इसके पहले की यरूशलेम कहलाता, वो यरूशलेम जो पहले शालेम कहलाता था, जो कि शांति थी, वो पहले यरूशलेम कहलाता था, इसके पहले की यरूशलेम कहलाता। वो यरूशलेम का राजा था, वो धार्मिकता का राजा था, शांति का राजा, शालेम का राजा। उसके कोई पिता ना था, उसके माता ना थी, उसके दिनों का आरंभ ना था, उसके जीवन का अंत नहीं था, उसकी वंशावली नहीं थी। ओहो, ये व्यक्ति कौन है? इस पर ध्यान दें। युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात जय प्राप्त कर ली गई थी, ध्यान दें इसने क्या कहा। और मलकीसदक 18वां पद, 14वां अध्याय, उत्पत्ति। तब शालेम का राजा मलकीसदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। आइए आगे थोड़ा पढ़ें। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, सुनिए वो उसको सारांश देता है, वो कैसे इसको देता है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा ना हो कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है, ध्यान दें, ये मलकीसदक जैसे ही वो अब्राहम से जब वो राजाओं को मारकर लौटा आ रहा था मिला, परमेश्वर का भेद अब प्रकट हो रहा था। ये कौन था? कोई नहीं, वे उसका कोई इतिहास नहीं ढूंढ सकते क्योंकि उसके पास कोई पिता नहीं था, उसके पास कोई माँ नहीं थी, उसके समय का कोई आरंभ नहीं था, उसका कभी भी कोई समय नहीं था कि वो कभी मरता, इसलिए वो जो कुछ भी था वो अब भी जीवित है, उसका कभी भी आरंभ नहीं था, इसलिए वो कोई और नहीं हो सकता सिवाय एल एला एलोहिम स्वयं भू स्वयं चिरस्थाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यीशु का एक पिता था, यीशु की माता थी, यीशु के दिनों का आरंभ था, यीशु के पृथ्वी के जीवन का एक अंत था, परंतु ये मनुष्य इसके पास ना ही पिता ना ही माता, आमीन, कोई पिता नहीं माता नहीं, यीशु के पिता और माता दोनों थे, इस व्यक्ति का ना पिता ना माता, आमीन। और इसने क्या किया? जब युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद, जब अब्राहम ने अपनी स्थिति ली, इसके बाद जब कलीसिया ने अपना सही स्थान लिया, हम पवित्र आत्मा के द्वारा लेपालक पुत्र कहलाए, और जब प्रत्येक मनुष्य अपने स्थान को ले लेता है जिसे परमेश्वर उसे करने के लिए बुलाता है और जीवन के अंतिम छोर पर खड़ा होता है, खोइयों के पीछे जाता है, पहले पौलुस इसमें से सारा भय निकालता है, कहता है अब यदि आप बुलाए हुए हैं, यदि आप यूं ही अपने विचारों में कार्य नहीं कर रहे हैं किसी धर्म विज्ञान के द्वारा, यदि आप वास्तव में आत्मा से जन्मे हैं, तो फिर परमेश्वर ने आपको संसार के रचने से पहले ठहराया है, आपके नाम को मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा है, और अब हम एक साथ मसीह यीशु में मिलकर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, एक पवित्र लोग, एक पवित्र राष्ट्र, एक विचित्र लोग, राजसी याजक पद, परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ा रहे हैं जो कि हमारे होंठों का फल है, उसके नाम की महिमा करते हैं। लोग भीतर आकर कहते हैं वे लोग पागल हैं, निश्चय ही है परमेश्वर की बुद्धिमानी मनुष्य के लिए मूर्खता है और मनुष्य की बुद्धिमानी परमेश्वर के लिए मूर्खता है, वे एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु वास्तव में आत्मा से भरी हुई कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ से भरी मिलकर स्वर्गीय स्थानों में बैठी है, आत्मिक बलिदान चढ़ा रही है, परमेश्वर की स्तुति, पवित्र आत्मा उनके मध्य में मंडरा रहा है, पाप को परख रहा है और उनके मध्य में जो बातें हैं वो जो गलत हैं कह रहा है ठीक किया और इसे स्पष्ट और बराबर कर रहा है। क्यों? क्योंकि सदा परमेश्वर की उपस्थिति में वो लहू लुहान बलिदान। अब स्मरण रखें, आज प्रातः हमने इसे देखा, आप लहू के द्वारा नहीं बचे, आपको लहू के द्वारा बचाया जा रहा है, परंतु आप अनुग्रह से बचे हैं इस पर विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर ने आपके हृदय को खटखटाया क्योंकि उसने आपको पहले से ठहराया, आपने देखा और इसका विश्वास किया, अब लहू आपके पापों के लिए छुटकारा बनता है। स्मरण रखें, मैंने कहा कि परमेश्वर पापी को उसके पाप करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, वो तो आरंभ से ही पापी है, वो एक मसीही को पाप करने के लिए दोषी ठहराता है, और तब क्योंकि उसने उसे दोषी ठहराया, मसीह ने हमारा दोष ले लिया। इसलिए वे जो मसीह यीशु में हैं, उन पर कोई दोष नहीं है। वे शरीर के अनुसार नहीं चलते परंतु आत्मा के अनुसार। और यदि आप कोई गलत कार्य करते हैं, ये जानबूझकर नहीं, आप जानबूझकर पाप नहीं करते। एक मनुष्य जो जानबूझकर पाप करता है, जाकर जानबूझकर पाप करता है, वो कभी भी अब तक देह में नहीं आया। परंतु एक मनुष्य जो एक समय वहाँ था, वो मर गया था और उसका जीवन मसीह के द्वारा परमेश्वर में छिपा था, पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद किया गया और शैतान उसे ढूंढ ना सका। वो वहाँ इतना अंदर था, इसके पहले कि शैतान उसके भीतर जा सके, उसे बाहर आना ही था। क्योंकि आप मरे हुए हैं, मरे हुए मनुष्य से कहें कि वो ढोंगी है और देखिए क्या घटित होता है। उसके एक और लात मारें और कहें, तू पुराने ढोंगी तू, वो एक भी शब्द ना कहेगा। और ये ठीक बात है, वो वहीं पड़ा रहेगा। और एक मनुष्य जो मसीह में मर गया, आप उसे ढोंगी कह सकते हैं, आप जो चाहे कहें, वो इसके विरोध में कभी नहीं उठेगा। यदि कुछ है तो वो चुपचाप से कहीं जाकर आपके लिए प्रार्थना करेगा, ये ठीक बात है। परंतु उनमें से कुछ बहुत कुछ जीवित हैं। इस विषय में मैं यही सोचता हूँ, हमें मरे हुए को गाड़ना है। वे जो मसीह में मरे हुए हैं, हम उन्हें पानी में गाड़ते हैं। कभी कभी हम बहुत से लोगों को जीवित गाड़ देते हैं। बहुत जलन और झगड़ा और कलीसिया में बहुत कुछ है, परंतु हम इसे अलग नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर करता है। वो अपने लोगों को जानता है, वो अपनी भेड़ को जानता है, वो हर आवाज को जानता है, वो अपने बालकों को पहचानता है, और वो जानता है वो किसे पुकार सकता है, वो जानता है उसने किसे ठहराया है, वो जानता है उसने ये चीजें किसे दी हैं, वो स्वयं को किस पर प्रकट कर रहा है, वो कैसे परमेश्वर अपने बालकों पर विश्वास करता है और किस पर क्या करता है, और जानता है कि वे ठीक वैसे ही करेंगे। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर करता है? क्यों शैतान ने अय्यूब से कहा, एक दिन कहा परमेश्वर से, एक दिन कहा हाँ तेरे पास एक दास है। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर इसके समान कोई नहीं है, ये एक सिद्ध मनुष्य है, उस पर विश्वास था। शैतान ने कहा ओ हाँ उसके पास सारा कुछ चैन है, उसे थोड़े समय के लिए मुझे दे दे और मैं उसे ऐसा कर दूंगा कि वो तेरे मुंह पर तुझे बुरा कहेगा। उसने कहा वो तेरे हाथों में है, परंतु तू उसका जीवन ना लेना, समझे। और उसने सिवाय उसका जीवन छोड़ उसके साथ सब कुछ किया, परंतु वो अय्यूब बजाय इसके उसने क्या किया? क्या उसने परमेश्वर को कोसा जब परमेश्वर ने अपने बालकों को लिया, जब उसने ये सारी बुरी बुरी बातें उसके साथ की और सब कुछ? अय्यूब ने प्रश्न नहीं किया, वो अपने मुंह के बल गिरा और उसे दंडवत किया। हालेलुया। कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। आप भी उसी स्थिति में हैं। परमेश्वर अय्यूब में अपने विश्वास को जानता था। परमेश्वर जानता है कि वो आप पर कितना विश्वास कर सकता है, वो जानता है कि मुझ पर वो कितना विश्वास कर सकता है। परंतु अब हम जो बोल रहे हैं कि इस बालक को सही स्थान पर रखना है। अब बाइबल में जब युद्ध समाप्त हो गया, जब सारी बातें समाप्त हो गई, तब अगली बात हम क्या करते हैं? अगली चीज, हम युद्ध समाप्त होने के पश्चात क्या करते हैं? क्या आपने जाना हम क्या करते हैं? हम मलकी सदक से मिलते हैं। आइए मत्ती 16:16 जल्दी से देखें, यदि ये ठीक है या नहीं। संत मत्ती 16 अध्याय और 16 पद। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि ये सही है। मत्ती 16:16 मत्ती 6 नहीं, ये गलत है, इतने समीप नहीं हो सकता। 26:16 यहाँ वो शमौन पत्रस से बातें कर रहा है, क्षमा करें मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। छब्बीस क्योंकि बस अंतिम भोज, मैं इसी को लेने का यत्न कर रहा हूँ। मत्ती 26 अध्याय और 26 पद। अब हमें मिल गया, हम यहाँ अंतिम भोज पर हैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। सिन, SIN, सिन, पाप। मसीही जो गलत कार्य करते हैं, ठीक है, परंतु अब सुनिए 29वां पद, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। क्या अब्राहम के अपने स्थान पाने के पश्चात मलकीसदक ने यही चीज की, अपने लोगों को व्यवस्थित किया और युद्ध को जीता और वो वापस आया और मलकीसदक रोटी और दाखरस के साथ आया। युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात तब हम प्रभु यीशु के संग विवाह का भोज खाएंगे उस नए संसार में। ओ प्रभु का नाम धन्य हो। ठीक है, उसकी इच्छा के भेद, उसकी भली मनसा के अनुसार, फिर से इफिसियों 9 में, जिसे उसने अपने में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो। और इसे स्मरण रखें, हमने इसे अभी अभी देखा है, इफिसियों 1:10 कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो। अब हमने सीखा है कि समयों का पूरा होना किस बात की प्रतीक्षा कर रहा है, सारे समयों का पूरा होना, वो समय जबकि पाप का होना बंद हो जाएगा, वो समय जब मृत्यु थम जाएगी, वो समय जब बीमारी रुक जाएगी, वो समय जब पाप बंद हो जाएगा, वो समय जब सारे मिलावटें जो बातों को बिगाड़ती हैं, जो शैतान ने बिगाड़ दी हैं, रुक जाएगा, जब समय स्वयं रुक जाएगा। ध्यान दें कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे, दोनों जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है उसी में ही मसीह के द्वारा सब वस्तुएं एकत्र करे। जैसा कि मैंने आज प्रातः कहा, सारे छोटे मोटी जो हम पाते हैं, ये महान छोटी बातें, आप इन्हें उत्पत्ति में चमका सकते हैं, आप इन्हें निर्गमन में चमका सकते हैं, आप इन्हें लय व्यवस्था में चमका सकते हैं, आप इन्हें निकालते हुए और प्रकाशित वाक्य में लाते हैं, वे यीशु में पूरे हो जाएंगे। आप यूसुफ को लें, आप अब्राहम को लें, आप इसहाक को लें, आप दाऊद को लें, आप किन्हीं भी उन मोतियों को लें, परमेश्वर के वे लोग, और देखिए, यदि आप यीशु मसीह को ना देखें, उनमें से प्रत्येक से प्रकट होता है ताकि वो सारी वस्तुओं को एक में एकत्र करे मसीह यीशु में। अब थोड़ा सा आगे, अब वो 11 पद, उसी में पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। ओ एक मीरास, किसी को आपके लिए कुछ छोड़ना है कि मीरास बने, क्या ये ठीक बात है? एक मीरास, हमारे पास क्या मीरास है? हमारे पास कौन सी मीरास है? मेरे पास कोई नहीं है, परंतु परमेश्वर ने मेरे लिए मीरास छोड़ी है, जब उसने मेरा नाम पृथ्वी के रचने से पहले मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा। ओ, आप कहते हैं, अब एक मिनट रुकें भाई, यीशु ने ये किया जब वो आपके लिए मरा? नहीं, उसने कभी नहीं। यीशु वो मीरास मेरे वास्ते खरीदने के लिए आया। ठीक अगली पंक्ति को पढ़ें। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। परमेश्वर ने पृथ्वी के रचने से पहले, जैसे कि हमने इसे पाठ में होते हुए लिया, हमने कैसे देखा कि परमेश्वर जो स्वयं विद्यमान, उसमें किस प्रकार से प्रेम था, उसमें एक परमेश्वर होने का था, उसकी आराधना के लिए कुछ नहीं था, उसमें एक पिता होने का था, वहाँ वो अपने ही द्वारा था, उसमें एक बचाने वाला होने का था, कुछ खोया नहीं था, उसमें चंगा करने वाले का एक था, ये उसके गुण थे, वहाँ कुछ नहीं था। इसलिए उसका अपना आपा, उसकी अपनी भली मनसा ने इन बातों को उत्पन्न किया ताकि वो इस एक मनुष्य के द्वारा मसीह यीशु इस सब को एक साथ फिर एकत्र करता है। ओ, आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, ये एक भेदपूर्ण बात है। देखिए इस मीराश के लिए हमें पहले से ठहराया। यदि मेरे पास किसी मीराश का अधिकार है, यदि परमेश्वर मेरे हृदय पर खटखटा रहा है और कह रहा है, विलियम ब्रनम, मैंने तुम्हें बहुत पहले बुलाया इस संसार के रचने से पहले कि तू सुसमाचार प्रचार करे, मेरे पास एक मीराश है, अनंत जीवन की एक मीराश। अब परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि मेरे लिए उस मीराश को वास्तविक बना दे, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था जो मैं कर सकता था कि उसका अधिकारी होता। ये खाली था, ये वैध था, कुछ नहीं था जो मैं कर सकता था, परंतु समयों के पूरा होने पर परमेश्वर ने भेजा अपने ही अच्छे समय में यीशु, वो मेमना, पृथ्वी के रचने से पहले घात किया गया, उसका लहू बहाया गया ताकि मैं अपनी मीराश पर पहुंच सकूं। क्या होने के लिए? कौन सी मीराश? वो पुत्र पद, परमेश्वर का पुत्र होने के लिए। और अब ये आपके गले को मरने के लिए घोंट दे, परंतु क्या आप जानते हैं वो मनुष्य जो परमेश्वर के पुत्र हैं, वे छोटे ईश्वर हैं? आप में से कितनों को ये मालूम है? कितने जानते हैं कि यीशु ने ऐसा कहा है? बाइबल ने कहा, यीशु ने कहा, क्या तुम्हारी व्यवस्था स्वयं में नहीं कहती कि तुम ईश्वर हो? और यदि तुमने उन्हें ईश्वर कहा, जो कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 में कहा कि वे ईश्वर थे, क्योंकि वे थे, संसार के राज्य पर पूरा राज्य था, उसने उसे सारी चीजों पर अधिकार दिया और उसने अपना ईश्वरीय पद खो दिया, उसने अपना पुत्र पद खो दिया, उसने अपना राज्य खो दिया और शैतान ने उसे ले लिया। परंतु भाई, हम परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रहे हैं, परमेश्वर के पुत्रों की, जो कि वापस आएंगे और इसे फिर से ले लेंगे। समय के पूरा होने की बाट जो रहे हैं, जब पैरामिड चोटी तक पहुंचता है, जब परमेश्वर के सारे पुत्र प्रकट होंगे, जब परमेश्वर की सामर्थ बाहर आ जाएगी, हालेलुया, और सारी सामर्थ को ले लेगा जो कभी शैतान ने उससे ले ली थी। जी हाँ श्रीमान, ये उसकी है, वो दिव्य वचन है जो परमेश्वर से बाहर निकला, ये सत्य है, वो परमेश्वर का पुत्र था। तब उसने मनुष्य को वो छोटा ईश्वर बनाया और उसने कहा, यदि जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, उन्होंने उन्हें कहा, भविष्यवक्ताओं को, यदि उन्होंने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और परमेश्वर ने इस प्रकार कहा स्वयं ने कि वे ईश्वर थे। उसने मूसा को बताया, मैंने तुझे ईश्वर बनाया, और हारून को तेरा भविष्यवक्ता। आमीन हो। मैं धार्मिक उन्मादी के समान व्यवहार कर सकता हूँ, परंतु मैं नहीं हूँ। ओ, जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं और इन चीजों को देखती हैं, ठीक है, उसने मनुष्य को ईश्वर बनाया, अपने राज्य पर एक ईश्वर, और उसका राज्य समुद्र से समुद्र तक, किनारे से किनारे तक, उसके पास इसका नियंत्रण है। और जब यीशु आया, बिना पाप के एक परमेश्वर होने के नाते उसने ये सिद्ध किया। जब हवाएं चली, उसने कहा, शांत हो जा, थम जा, आमीन। और जब पेड़, उसने कहा, तुझ में से कोई मनुष्य नहीं खाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम जो छोटे ईश्वर हो, यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा, अपने अपने हृदय में संदेह ना करो, परंतु विश्वास करो कि जो तुमने कहा घटित होगा, तो तुम जो चाहो कहो तुम पा सकते हो। वापस उत्पत्ति में जाओ, मूल पर, ये क्या है? अब संसार और प्रकृति कह रही है, चिल्ला रही है, हर चीज हलचल कर रही है, क्या? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए। जब सच्चे पुत्र, उत्पन्न हुए पुत्र, भरे हुए पुत्र बोलते हैं और उनके वचन समर्थित हैं, मैं विश्वास करता हूँ हम इस समय इसकी सीमा पर हैं। जी हाँ श्रीमान, इस पहाड़ से कहो ऐसा हो जाए, भाई मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, एक निश्चित चीज हो गई, मैं यीशु मसीह में एक विश्वासी हूँ, मैं ये तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में देता हूँ। आमीन वहाँ प्रकट हो गया, ओ भाई वहाँ बाहर मेरी फसल जल रही है, कोई वर्षा नहीं हुई, मैं तुम्हारे पास प्रभु के नाम में वर्षा भेजूंगा और वहाँ वो होगी। ओ प्रतीक्षा कर रही है, कह रही है सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। परमेश्वर ने इसका आरंभ में ही अभिषेक कर दिया है, उसने मनुष्य को अधिकार दिया है, उसने यीशु मसीह को दिया और यीशु ने अपने नाम में दिया, इस आश्वासन के साथ पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगो और मैं इसे करूंगा। ओ भाई पामर, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा हो रही है। वो स्थिति कलीसिया, जैसा मैंने कहा इफिसियों की पुस्तक यहोशू की पुस्तक है और यहोशू लोगों को उसी स्थान में रखता है जहाँ से वे हैं। अब यदि वे शांत नहीं खड़े रहेंगे और उसने एप्रेम को यहाँ रखा है और मनुष्य की भूमि और ये वापस आएगा, एक विवाद और परेशान होना, वे कभी भी कैसे साथ साथ होंगे? जब एक कहता है मैं एक बैप्टिस्ट हूँ, मैं एक मेथोडिस्ट हूँ, मैं एक पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं वननेस हूँ, मैं टूनेस हूँ, मैं फला फला हूँ, आप इसे कैसे करने जा रहे हैं? शांत रहिए, परमेश्वर की इच्छा है कि अपनी कलीसिया को उपयुक्त स्थान पर लाए, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। परमेश्वर इसे देखने के लिए मुझे जीवित रखे, ये मेरी प्रार्थना है। बहुत समीप है, यहाँ तक कि मैं अपने हाथों से प्रतीत होता है कि अनुभव कर सकता हूँ, ये ठीक यही है, यही है जिसे देखने की मेरी इच्छा है। मार्ग पे चलते हुए समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वो अपाहिज पड़े हुए हैं अपनी माँ के गर्भ से ही, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। ओ परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा हो रही है, हालेलुया। जब परमेश्वर स्वयं को प्रकट करेगा, जब वे बीमारियों को रोक देंगे, वे कैंसर को रोक देंगे, वे रोगों को रोक देंगे। आप सोचते हैं कैंसर कुछ है? बाइबल ने कहा ऐसा समय आएगा जब मनुष्यों का मांस उन्हीं में सड़ जाएगा और शिकरे उनके मरने से पहले उनके शरीरों को खा लेंगे। जो आ रहा है कैंसर, उसमें दांत दर्द है, परंतु स्मरण रखें, ये भयानक चीजों को रोका गया है कि उस दिन में उन्हें न छुए जिनके पास परमेश्वर की छाप है। इसी बात के लिए हम अब यत्न कर रहे हैं कि भीतर आकर परमेश्वर के राज्य में यथा स्थान पर रखे जाएं, इसके पहले कि भयानक बीमारियां आए। ओ कितना भला है समय की अवधि, समय का पूरा होना, वो मिराज जिसमें हम पहले से ठहराए जाकर मीरास के उत्तर अधिकारी हुए। हमारी मीरास हमें कैसे दी गई? जिसके द्वारा? पहले से ठहराए जाकर। पहले से ठहराया जाना पूर्व ज्ञान है। परमेश्वर ने कैसे जाना कि वो आप पर प्रचारक होने के लिए विश्वास करे? उसका पूर्व ज्ञान, वो नहीं जो इच्छा करता है या वो जो दौड़ता है या वो, ये परमेश्वर है जो अनुग्रह दिखाता है, ये ठीक बात है। पहले से ठहराया जाना, वो जानता है कि आप में क्या था, उसे मालूम था कि आप में क्या था इसके पहले कि आप पृथ्वी पर आते, इसके पहले कि पृथ्वी होती और आप उस पर आते, वो जानता था कि आप में क्या था। ये वही है, ये अनंत परमेश्वर है, अनंत। हम सीमित हैं, हम केवल सीमित ही सोच सकते हैं, यही मेरे लिए बहुत है, तब से मुझे क्या हुआ मैं नहीं जानता। जब मैं वहाँ सोचता हूँ, जब मैं वहाँ आनंदित क्षणों में खड़ा हुआ और सोचा वहाँ कोई आने वाला कल नहीं, ना बीता हुआ कल था, वहाँ कोई रोग नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं है, बजाय संपूर्ण आनंद के वहाँ कोई थोड़ा सा आनंद नहीं है, वहाँ सब आनंद ही आनंद है। ओ जब मैं वहाँ खड़ा हुआ और मैंने कहा ये क्या है, उस आवाज ने कहा ये सिद्ध प्रेम है, और हर चीज जिसे तुमने कभी प्रेम किया और हर चीज जिसने कभी आपसे प्रेम किया वो यहाँ अब आपके साथ है, और आप हमें यीशु के सामने उपस्थित करेंगे जब वो आता है अपनी सेवकाई के परितोषक के समान। मैंने वहाँ उन सुंदर महिलाओं को खड़े देखा, सब मुझे पकड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे मेरा अमूल्य प्रिय भाई। उन मनुष्यों को देखा, वो झबरे बाल उनकी गर्दन के चारों ओर दौड़ते हुए मुझे पकड़ रहे थे और कह रहे थे हमारा प्रिय भाई। मैंने सोचा इसका क्या अर्थ है? उसने कहा ये तुम्हारे लोग हैं। मैंने कहा मेरे लोग? वहाँ इतने वर्णम नहीं हो सकते, वहाँ लाखों थे। उसने कहा ये तुम्हारे मत परिवर्तन लोग हैं। हालेलुया, वे तुम्हारे मत परिवर्तन लोग हैं, यही वे हैं। कहा आप देखिए, वो वहाँ पर खड़ी थी, बहुत ही सुंदर महिला जो मैंने कभी देखी। कहा जब तुमने उसकी अगुवाई परमेश्वर तक की, वो 90 वर्ष से ऊपर की थी, कोई आश्चर्य नहीं, वो चिल्ला रही थी मेरा प्रिय भाई। कहा वो कभी भी अब बूढ़ी नहीं होगी। वो वहाँ से निकल कर आगे बढ़ गई। वो शानदार युवा अवस्था में थी। वो यहाँ खड़ी थी, वो ठंडा पानी नहीं पी सकती क्योंकि उसको इसकी आवश्यकता नहीं थी। वो लेटकर सो नहीं सकती थी क्योंकि वो थकित नहीं होती थी। वहाँ कोई आने वाला कल, बीता कल कुछ भी नहीं है। हम अब अनंतता में हैं। परंतु किसी महिमा वाले दिन परमेश्वर के पुत्र आएंगे और तुम्हारा न्याय तुम्हारे प्रचार किए गए वचनों के द्वारा जो तुमने प्रचार किया किया जाएगा। ओ भाई, मैंने कहा क्या पौलुस को अपना झुंड लाना होगा? जी हाँ श्रीमान, मैंने कहा मैंने बिल्कुल ठीक जैसा पौलुस ने कहा प्रचार किया है। मैंने इसकी दिशा नहीं बदली, मैंने इसे किसी भी कलीसिया के धर्मसार में नहीं ले गया या ऐसा कुछ। मैं ठीक वैसा ही इसके साथ बना रहा और वे सारे के सारे एक साथ चिल्लाए। हम ये जानते हैं कि उसी आश्वासन के साथ हम विश्राम कर रहे हैं। कहा आप हमें उसके सन्मुख उपस्थित करेंगे और तब हम पृथ्वी पर फिर से वापस जाएंगे कि सदा जीवित रहें। ओ प्रभु, तभी फिर मैं आने लगा। मैंने देखा मैं पलंग पर पड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने पुराने शरीर को देखा, बूढ़ा हो रहा था और झुर्रीदार और सुखड़ रहा था और बीमार और दुखी। और मैंने अपने हाथों को अपने सिर के पीछे देखा और मैंने सोचा, ओ क्या मुझे फिर से इसी में वापस जाना पड़ेगा। और मैं उस आवाज को सुनता रहा, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैंने कहा प्रभु, मैंने सदा दिव्य चंगाई का विश्वास किया है, मैं इसका विश्वास करता रहूंगा, परंतु मैं उन प्राणों के लिए यत्न करूंगा, इसलिए मेरी सहायता करें। मैं वहां बहुत सुख ले लूंगा, मैं ले लूंगा। प्रभु मुझे जीवित रहने दें और मैं लाखों को वहां मिला लूंगा यदि आप मुझे जीवित रहने दें। मैं चिंता नहीं करता कि क्या रंग है, क्या धर्मसार है, कौन से राष्ट्र या नागरिक है, वे कौन है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं वे सब एक होते हैं और वे सीमा रेखाएं पार हो गई हैं। ओ मैं उन महिलाओं को देख सकता हूँ, इतनी सुंदर कभी नहीं देखी। नीचे तक लंबे लंबे बाल उनकी पीठ पर, नीचे तक लंबे लंबे स्कर्ट, वे नंगे पैर थीं। उन पुरुषों को झबरे झबरे बालों के साथ जो उनकी गर्दन तक थे देखा, लाल सिर, काले सिर, सारे विभिन्न रंगों के, और वे मेरे चारों ओर हाथों को डाल रहे थे। मैं उन्हें अनुभव कर सकता था, मैंने उनके हाथों को अनुभव किया। परमेश्वर मेरा न्यायी है, पवित्र पुस्तक खुली हुई है। मैं उनके हाथों को इसी प्रकार अनुभव कर सकता था जैसे अपने हाथ मेरे मुंह पर, वे अपने हाथ मेरे चारों ओर डाल रहे थे। कोई महिलाओं वाली संवेदना नहीं जैसे कि अब होगी। मैं चिंता नहीं करता कि आप कितने पवित्र हैं, आप कौन हैं, आप किस प्रकार के प्रचारक हैं, या आप जो भी हो सकते हैं, पादरी या आप जो भी हो। कोई ऐसा मनुष्य नहीं कि महिला के गले में हाथ डाले और बिना मानव अनुभूति के हो, ये बिल्कुल सत्य है। परंतु भाई, जब आप यहाँ से वहाँ के बीच चले जाते हैं, वहाँ ये इस प्रकार से नहीं है। ओ प्रभु, ये ऐसा है, ओ वहाँ ये असंभव है। ये संपूर्ण प्रेम है, हर चीज वास्तविक है भाई और बहन, हर चीज वास्तविक है। वहाँ मृत्यु नहीं, दुख नहीं, ईर्ष्या नहीं, कुछ नहीं, वहाँ और कुछ प्रवेश नहीं कर सकता, केवल सिद्धता है। इसी के लिए मैं यत्न कर रहा हूँ, इसी को मैं रख रहा हूँ। मैंने कहा, ओ प्रभु, मैं इसी के लिए यहाँ कलीसिया में हूँ, कलीसिया को व्यवस्थित करने का यत्न कर रहा हूँ। भाई और बहन, आप लोगों को बता रहा हूँ, केवल एक ही चीज वहाँ प्रवेश कर सकती है, वो सिद्ध प्रेम है। इसलिए नहीं कि आप बर्नम आराधनालय के प्रति ईमानदार हैं या मेथोडिस्ट कलीसिया या बैप्टिस्ट कलीसिया के हैं, वे ठीक हैं, आपको होना चाहिए। परंतु वो मित्र आपके पास है, इसलिए नहीं कि आप अन्य अन्य भाषा में बोले हैं, आत्मा में नाचे हैं, क्योंकि आपने प्रेत आत्माओं को निकाला है या विश्वास से पहाड़ों को हटाया है। ये सब ठीक है, ये ठीक है, परंतु जब तक वो वास्तविक प्रेम भीतर ना हो जहां वो सिद्ध,
oh my, it's an adoption. God, before the foundation of the world. Now, let's hurry up. Let's get this one chapter through anyhow. If possible, in the next 10 minutes. To whom we also have
मीरास बने, हम किसके उत्तर अधिकारी हुए अनंत जीवन के पहले से ठहराए जाकर। कैसे, क्या सब ये समझते हैं? क्या आपने परमेश्वर को पुकारा? नहीं, परमेश्वर ने आपको बुलाया।
Some people say, "Oh, I just sought God and sought God." You did not.
किसी मनुष्य ने कभी परमेश्वर को नहीं खोजा, ये परमेश्वर मनुष्य को खोज रहा है। यीशु ने कहा, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं आ सकता सिवाय जब तक कि पिता पहले ही उसे ना खींच ले। देखिए, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो परमेश्वर से भागे। और अब आप कहते हैं ये यही है जो दिक्कत करता है। आप जानते हैं, आप लोगों को प्रचार करना, उसी स्थिति में न बने रहें जिसमें कि आप चल रहे थे, अब बदल जाएं। जैसा मैं कहता हूँ मेरी सुने, यहोवा यूं कहता है, मैंने कभी भी स्वयं को ये नहीं कहा मैं नहीं हूँ, परंतु आप मुझे अपना भविष्यद्वक्ता कहते हैं या एक भविष्यद्वक्ता। संसार इसका विश्वास करता है, समस्त संसार में करोड़ों करोड़ों लोग, मैं सीधे सीधे और अप्रत्यक्ष ढंग से 10 या 1 करोड़ 20 लाख लोग या अधिक से बोल रहा हूँ, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। मैंने हजारों लाखों दर्शन देखे और चिन्ह और आश्चर्य कर्म, और उनमें से एक भी कभी भी असफल नहीं हुआ, और ये ठीक बात है। उसने मुझे बातों को पहले ही बताया जो घटित होने में असफल नहीं रही। ठीक वैसे ही मैं इसके लिए किसी भी मनुष्य को परखने के लिए बुलाऊंगा। ये ठीक बात है। मैं भविष्यद्वक्ता होने का दावा नहीं करता, परंतु आप मेरी सुने। यहोवा यूं कहता है, ये सिद्ध प्रेम ही आपको उस स्थान में रखेगा, क्योंकि वहाँ केवल वही था। कोई अर्थ नहीं कितना पैसा, कितने ही धार्मिक प्रदर्शन, कितने ही भले कार्य आपने किए या आपने जो भी किया, उस दिन कुछ भी नहीं गिना जाएगा। ये सिद्ध प्रेम को लेगा। इसलिए आप जो भी करते हैं, आप हर चीज को एक ओर रख दें, जब तक आप परमेश्वर के प्रेम से ना भर जाएं, जब तक कि आप उनसे प्रेम ना करें जो आपसे घृणा करते हैं। मैं बस जैसे कि मैंने इस प्रातः कहा, मेरा रंग रूप सारा अनुग्रह से बना है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अब आप मेरी पीठ खुजा दो, मैं आपकी खुजा दूंगा। हाँ, तुम मेरे लिए कुछ कर दो, मैं आपके लिए कुछ कर दूंगा। ये अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह वो है यदि आपकी पीठ में खुजली लग रही है, जो भी है मैं उसे खुजाऊंगा, भले ही आप मेरी खुजाओ या ना खुजाओ। आप मेरे मुंह पे चांटा मारो और कहे मेरी पीठ को खुजलाने की आवश्यकता है, मैं खुजा दूंगा। समझे, यही है, कुछ करें। मैं कार्यों में विश्वास नहीं करता, मैं प्रेम के कार्यों में विश्वास करता हूँ। कार्य इस बात का प्रकटीकरण है कि अनुग्रह हुआ है। मैं अपने पत्नी के प्रति इसलिए सच्चाई से नहीं जीता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि वो मुझे तलाक दे देगी यदि मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उसके प्रति इसलिए सच्चा हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं सुसमाचार इसलिए नहीं प्रचार करता क्योंकि मैं सोचता हूँ कि नरक में चला जाऊंगा यदि नहीं किया तो। मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। निश्चय ही आप सोचते हैं कि मैं उन तूफान भरे समुद्रों को पार करूंगा और वे जहाज आगे पीछे झुक रहे हैं और बिजली उसके आसपास चमकती है और सब कुछ, और किसी भी मिनट हर कोई चिल्ला रहा है और मरियम की जय उस जहाज में चल रहा है और सब कुछ, वे लोग अपनी रक्षक पेटियों में झूल रहे हैं और पायलट कह रहा है 15 मिनट और चलने के लिए ईंधन है, नहीं जानते कि हम लोग कहाँ पर हैं। क्या आप सोचते हैं कि मैं करूंगा इसे करने में आनंद पाने के लिए? क्या आप सोचते हैं मैं वहाँ जंगलों में जाऊंगा जहाँ जर्मनी सिपाहियों को मेरे चारों ओर हर रात्रि इस प्रकार से हथियार रखने पड़े और मुझे सभा में अंदर और बाहर ले गए जब तक पवित्र आत्मा ने आश्चर्य कर्म आरंभ नहीं कर दिए? साम्यवादियों ने अपने रात्रियों में देखने के यंत्रों को 1 मील दूर पर मुझ पर गोली चलाने के लिए तैनात किया। क्या आप सोचते हैं मैं ये केवल इसमें मजे लेने के लिए करूँगा? क्योंकि मुझ में कुछ है, प्रेम करता है। ये लोग मनुष्य हैं जिनके लिए मसीह मरा। पौलुस ने कहा, मेरी इच्छा यरूशलेम जाने की नहीं है, परंतु मैं वहाँ क्रूस पर चढ़ने को जा रहा हूँ, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ प्रभु के लिए मरने जा रहा हूँ। ये कुछ है प्रेम जो आपको बाध्य करता है, वो आपको करता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। यदि मैं पैसों के लिए सुसमाचार प्रचार करूँ, यदि ये नहीं होता तो आज रात्रि मुझ पर $20,000 का कर्जा नहीं होता, मेरे ऊपर ये देनदारी ना होती। नहीं श्रीमान, क्योंकि मैंने कुछ लाखों, मुझे कुछ लाखों दिए गए हैं। एक मनुष्य ने FBI का एजेंट भेजा $10,50,000 ड्राफ्ट के साथ। मैंने कहा इसे वापस ले जाएं। पैसों के लिए नहीं, ये पैसा नहीं है। मैं पैसों के लिए सुसमाचार प्रचार नहीं करता, इसके लिए नहीं, ये प्रेम के कारण। वो चीज जो मैं करना चाहता हूँ जब मैं अंतिम सांस को पार कर जाऊँ, जो कि अब से 5 मिनट बाद हो सकती है, ये अब से 2 घंटों के पश्चात हो सकती है, ये अब से 50 वर्षों बाद हो सकती है, मैं नहीं जानता ये कब होगा, परंतु जब ये होता है मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मैं आपको वहाँ देखना चाहता हूँ। शानदार युवा दौड़ रहे हैं, आनंद से चिल्ला रहे हैं, मेरा प्रिय भाई, मेरा भाई, यही मेरे हृदय में है। इसी कारण मैं आपसे असहमत होने का यत्न नहीं करता कि भिन्न बनूं, परंतु मैं आपको मार्ग पे लाने का यत्न करता हूँ। ये ठीक बात है, ये भीतर का मार्ग है। आपकी कलीसिया नहीं, आपका नामधारी नहीं, परंतु आपका मसीह में जन्म, ओ प्रभु, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। सुनिए, हम अब कुछ मिनटों में बंद करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब इसके पहले हम बंद करें, जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, जिसमें तुमने विश्वास भी किया। अब इसे ध्यान से देखें, अपने जामे ले लें, सुसमाचार के वस्त्र, अपने कानों को खुला रखें, ध्यान से सुने। मैं 13वें पद पर हूँ, जिस पर तुमने विश्वास किया जब तुमने सत्य का वचन सुना। सुनना किसका वचन? जब तुमने सत्य का वचन सुना। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। क्या ये ठीक है? यूहन्ना 17:17, आप जो वचन लिख रहे हैं, यीशु ने कहा, पिता उन्हें सत्य से पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। उद्धार क्या था? वो जो तुम्हें बताने का यत्न कर रहा था, पृथ्वी के रचने से पहले ठहराया जाना। क्या ये ठीक है? पुत्रों को लेपालक पद अनंत जीवन के लिए पहले से ठहराए गए। अब अनंत जीवन में आने के पश्चात आपके बचाए जाने के, पवित्र किए जाने के, पवित्र आत्मा से भरे जाने के पश्चात आप पुत्र हैं। आप परमेश्वर आपको सही स्थान पर रखना चाहता है, ओ ताकि आप उसके राज्य के लिए कार्य कर सकें और उसकी महिमा के लिए। यही सुसमाचार है। पहले वचन सुना, प्रायश्चित करो और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से आपके सारे पाप दूर हट जाते हैं। उस प्रतिज्ञा के देश के लिए, तुम हर परदेशी के लिए जो अपने मार्ग पर है, ये प्रतिज्ञा है। यदि आज रात्रि आप अपना घर छोड़ दें, एक पापी कह रहा है, मैं बर्णम आराधनालय में जाऊंगा, आज रात्रि परमेश्वर आपको सुअवसर देता है। आपके और प्रतिज्ञा के देश के मध्य में एक चीज है। प्रतिज्ञा का देश क्या है? पवित्र आत्मा। यहोशू और प्रतिज्ञा के देश के मध्य में क्या था? यर्दन थी। बिल्कुल ठीक, मूसा मसीह की प्रतिछाया बालकों को प्रतिज्ञा के देश तक ले आया। तब मूसा बालकों को प्रतिज्ञा के देश के भीतर नहीं ले गया, यहोशू भीतर ले गया और भूमि का बंटवारा किया। यीशु ने मूल्य चुकाया, पवित्र आत्मा तक अगुवाई करके ले गया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को नीचे भेजा और उसने कलीसिया को सही स्थान पर व्यवस्थित किया। प्रत्येक मनुष्य उसे अपने उपस्थित जीवन से भर रहा है। आप देखिए मेरा क्या अर्थ है, सब मसीह यीशु में कैसे परमेश्वर ने इसे पहले से ठहराया। इस सुसमाचार की बुराहट से पौलुस ने गलतियों 1:8 में कहा, यदि कोई स्वर्गदूत भी आकर कुछ और प्रचार करे तो वो श्रापित ठहरे। सुसमाचार का सत्य, अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, अब ध्यान पूर्वक सुने, पद को समाप्त कर रहे हैं, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार जिसमें कि तुमने भी, ध्यान से सुने, जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। बाइबल ने कहा कि अंतिम दिनों में, अब ध्यान दें, अंत के दिनों में दो प्रकार के लोग होंगे, उनमें से एक जिन पर परमेश्वर की मोहर होगी और दूसरे पशु की छाप वाले लोग। क्या ये ठीक बात है? कितने ये जानते हैं? अच्छा, यदि परमेश्वर की मोहर मोहर है, यदि परमेश्वर की मोहर पवित्र आत्मा है, तो फिर बिना पवित्र आत्मा के पशु की छाप है। बाइबल ने कहा कि दोनों आत्माएं इतनी समानता में होंगी कि ये चुने हुओं को भी भरमा दें। यदि ये संभव होता, ये कभी नहीं करेगा क्योंकि वे अनंत जीवन के लिए चुने हुए हैं। समझे? कलीसिया जा रही है जिस प्रकार से जानते हैं। वहाँ 10 कुंवारियाँ थीं जो प्रभु से मिलने के लिए गईं, सारी पवित्र की गई, सारी पवित्र, उनमें से प्रत्येक पवित्र की गई थी। 5 विलंबकारी और उनके चिराग बुझ गए, 5 के पास तेल था उनके चिरागों में, और देखो दूल्हा आ रहा है, और 5 जिनके पास उनके चिरागदानों में तेल था विवाह के भोज में चली गईं, और दूसरी बाहर रह गईं, वो रो रही थी, विलाप कर रही थी और दांत पीस रही थी। तैयार रहें क्योंकि आप नहीं जानते कि प्रभु किस मिनट में आ रहा है। और बाइबल में तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। अब आज आपको, आप सेवंथ डे एडवेंटिस्ट भाइयों जो कहते हैं 7वां दिन परमेश्वर की मोहर है, इसे सिद्ध करने के लिए एक भी वचन लाएं। बाइबल ने कहा कि परमेश्वर की मोहर पवित्र आत्मा है। इस पर ध्यान दें जो कि अब 13वें पद पर ध्यान दें, जिस पर तुमने विश्वास किया तुम पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। इफिसियों 4:30 निकाले, मैं विश्वास करता हूँ कि यही है। देखिए यदि हम 4:30 नहीं निकालते, देखिए यदि ये वैसा ही नहीं है। इफिसियों का 4:4 और 30वां पद, हाँ ये यही है 4:30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो जिसमें कि तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। कितने समय के लिए? जब आप वास्तव में पवित्र आत्मा पाते हैं, ये कितने समय तक आपके साथ है? अगली बेदारी तक, जब तक दादी आपके मार्ग को पार नहीं करती, जब तक आपका स्वामी आप पर नहीं चिल्लाता, जब तक आपका छुटकारे का दिन नहीं आता। हालेलुया। जब तुम मर गए, जब तुम उस देश में पहुंच गए जहां पर तुम अपने प्रियजनों के साथ खड़े हो, आप अब भी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। पवित्र वचन आप वैसे ही हैं जैसे आप अब हैं, केवल आपको एक आप दूसरी देह में चले गए, आपने केवल घर बदले हैं, ये वाला पुराना हो गया, अब आप इस पर और अधिक तख्ते नहीं जड़ सकते, कड़ियां गल गई हैं, ये ठीक बात है। इसलिए आप केवल पुरानी चीज को छोड़ सकते हैं और उसे नीचे सड़ने दें और नए वाले में चले जाएं, क्या ये ठीक बात है? क्योंकि यदि ये पृथ्वी का सा डेरा गिराया गया तो हमारे पास एक है जो प्रतीक्षा कर रहा है। आपको स्मरण होगा कि उस दिन हमने इसे देखा था जब एक छोटा बालक अपनी माँ के गर्भ में बनता है और ये छोटी छोटी मांसपेशियां उछलती कूदती और बढ़ती हैं, परंतु जैसे ही माँ बालक को जन्म देती है और बालक पृथ्वी पर आता है तो पहली चीज वहाँ आत्मिक देह है जो उस छोटी शारीरिक देह को पकड़ती है। संभवतः डॉक्टर उसे एक थप्पड़ मारता है इस प्रकार से या कुछ हिलाते हैं और वाह वाह वाह, और ये तुरंत ही माँ की छाती की ओर बढ़ता है, अपने छोटे से सिर को ऊपर नीचे हिलाता है माँ की छाती पर कि दूध की नसें दूध को लाएं। एक छोटा बछड़ा जैसे ही वो अपनी माँ से जन्म लेता है, वो थोड़ी देर बाद अपने छोटे छोटे पैरों पर खड़ा होता है। ये क्या करेगा? सीधा पीछे की ओर घूमेगा, अपनी माँ को पकड़ेगा और अपने छोटे सिर को ऊपर नीचे करना आरंभ करेगा इस प्रकार से, और अपना दूध पाता है। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, जब ये शारीरिक देह उसमें आती है तो वहाँ आत्मिक देह इसकी प्रतीक्षा करती है, और जब ये शारीरिक देह पृथ्वी पर गिरती है, हालेलुया, तो वहाँ सामने एक प्रतीक्षा कर रही है। हम केवल एक में से दूसरे में जाते हैं, हम अपने निवास स्थान बदलते हैं। ये मरणहार अमरणहार को पहन लेता है, ये आत्मिक ये नाशमान अविनाश को पहन लेता है, ये बूढ़ा झुर्रीदार सुकड़ी हुई झुकी हुई दे, परंतु ये अपने रूप को बिल्कुल नहीं बदलेगी। मेरा जब ये वहाँ पहुँचती है तब भी आप में वही आत्मा रहेगी। मैं आपको छोटा कुछ बताऊं जो आपको घुमाता है, परंतु ये बाइबल है। तब फिर मैं आपको एक और दूंगा जो कि आपको वापस लाता है। इस पर ध्यान दें, जब वो बूढ़ा शाऊल, वो राजा, वो पुराना बड़ा पुराना नामधारी प्रचारक उस समय वहाँ था, आप जानते हैं, जिसका सर और कंधा सबसे ऊपर था, और वे डरे हुए थे, वे उस अलौकिक के विषय में कुछ नहीं जानते थे। दाऊद को आना पड़ा और मेमने को सिंह के मुंह से छुड़ाया, गोलियत को मारा। उस पर ध्यान दें, वो परमेश्वर से इतना पीछे हट गया था कि वो इस पवित्र शोर मचाने वाले प्रचारक से घृणा करने लगा, और बजाय उसके पक्ष में होने के कि उसकी सहायता करने का यत्न करे, वो उसके विरोध में हो गया। यदि ठीक यही चित्र नहीं है, सही चित्र उससे अलग हो गया। कितने आप में से यहाँ पर थे जब मैंने अपनी पहली यात्रा पर निकला और प्रचार किया दाऊद का गोलियत को घात करना, जब मैंने छोड़ा? बहुत से जो पुराने वाले हैं, मैं इसी पर फिर से जाने के लिए तैयार हूँ, स्मरण रखें। क्या देखिए, पिछले रविवार को आया, ये किसी और चरण में चल रहा है। दाऊद का दूसरा अभियान, उसकी सेवकाई का दूसरा चरण, ये बिल्कुल ठीक बात है, जो कि तब वो इज़राइल के ऊपर राजा हो गया। ध्यान दें, सेवकाई अब बड़े चरण में बढ़ रही है, बढ़कर आ रही है, ऐसे ही दाऊद ने किया। जैसे वो आता है, मैंने इस पर ध्यान दिया। दाऊद, जब परमेश्वर ने दाऊद को वहाँ लाने के लिए लिया और सिंह को घात किया, ध्यान दें, और भालू को घात किया, तब फिलिस्तीनियों को घात किया, अब एक समय आया जब परमेश्वर ने इस पुराने लड़के पर प्रेत आत्मा छोड़ा, और किसका? दाऊद से घृणा करे। और मैं विश्वास करता हूँ अब ये टेप, अब भाइयों सुनिए, आप जो इन टेपों पर हैं, यदि आप मुझसे असहमत हैं तो मुझे क्षमा करें। देखिए, मैं आपसे प्रेम करता हूं, जो भी है मैं आपसे वहां मिलने वाला हूं, समझे? क्योंकि जो भी है, यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो मैं आपसे वहां मिलने जा रहा हूं। परंतु मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यहां वो कारण है क्योंकि शाऊल ने दाऊद को देखा कि उसके पास कुछ ऐसा है जो कि उसके पास नहीं है। तब क्या हुआ? एक छोटा पुराना सुस्वस्थ सुडौल, बाइबल ने कहा वो सुस्वस्थ था, वो बहुत आकर्षक बालक नहीं था, सुस्वस्थ बस एक छोटा सुडौल प्रकार का एक लड़का, और वो वहाँ बाहर गया और शाऊल, क्यों उसने शाऊल के हथियार उस पर लाद दिए, और मैं कल्पना करता हूँ कि ढाल उसके पैरों तक आ रही थी, और उसने कहा कि इस सामान को मुझ पर से उतार दो। ठीक है, मेरे पास, उन्होंने उसे डॉक्टर की डिग्री दी, एक पीएचडी और एलएलडी या कुछ, आप जानते हैं। कैसे? उसने कहा, मैं इस सामग्री के विषय में कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं इसका अभ्यस्त नहीं हूँ, मेरे पास वो ही रहने दो जो कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी हाँ श्रीमान, उसने गोफन ली और पुत्रियों के कारण उन्होंने दाऊद को पागल बना दिया। कलीसियाएं गा रही थी, शाऊल ने हजारों को मार सकता है परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। वो द्वेष से भर गया। ये वही पुराना यीशु नाम का सामान, इससे कुछ नहीं, ये ठीक बात है। और परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? परमेश्वर ने उस पर एक प्रेतात्मा भेजा कि दाऊद से घृणा करे, और उसने बिना किसी कारण दाऊद से घृणा की। कुछ एक बार दाऊद उसकी गर्दन मरोड़ सकता था, वो कर सकता था, परंतु उसने जाने दिया, उसने बस उसे कुछ नहीं कहा। निश्चय वो कर सकता था, उसने बढ़कर उसके बागे का छोर काट लिया। एक रात्रि वापस आकर कहा, इधर देख, आपने देखते हैं? जी हाँ श्रीमान, वो कर सकता था, परंतु उसने उसे छोड़ दिया। वो उसकी भक्त मंडली को तोड़ सकता था और उन्हें छिता देता और स्वयं की संस्था आरंभ करता यदि वो चाहता, परंतु उसने ये नहीं किया, उसने शाऊल को जाने दिया, परमेश्वर ही लड़े। जी हाँ श्रीमान, इसलिए जैसे ही वो बाहर आया और अभियान समाप्त हो गया और ले लिया कि प्रेत आत्मा ने इसे ऐसा पकड़ा कि शाऊल को परमेश्वर की ओर से उत्तर ना मिल सका। कुछ समय पश्चात प्रभु का आत्मा उसे छोड़कर चला गया और बूढ़ा सैमुएल, जिसे उन्होंने त्याग दिया, वो जो वास्तव में परमेश्वर की आवाज था उनके लिए, वो जिसने उनसे कहा इसके पहले कि वे संसार के समान व्यवहार करते। कैसे कलीसिया संसार के समान व्यवहार करना चाहती है? पेंटिकॉस्टल क्यों बपतिस्मा देते हैं? पवित्र आत्मा का अनुभव मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन संसार के समान व्यवहार करना चाहते हैं, वे इसे क्यों करते हैं? मैं नहीं जानता, मैं इसे नहीं समझ सकता। आप कहते हैं ताश का खेल खेलने में आनंद आता है, बस थोड़ा सा हंसी के लिए एक छोटा पैसे का दांव, जो भी आप इसे कहते हैं, ये पाप है। आपको अपने घर में ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए। बियर के एक छोटे गिलास से कोई हानि नहीं होती। हमारे यहाँ कुछ है, मैंने और मेरी पत्नी के पास इस दोपहर पश्चात कुछ है, और पहली बात आप जानते हैं, आपके बालकों के पास कुछ है, निश्चय ही। और आप महिलाओं, शैतान ने बस एक बनाया, आरंभ में उसने यही किया, और निश्चय ही आप ही में से बहनों, उसने किसी को निशाना बनाया। वो बस करता है ताकि, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कर सकता है, वो महिला को हजार गुना अधिक जल्द ही धोखा दे सकता है बजाय पुरुष के। मैं जानता हूँ कि इससे आपकी भावना को आघात पहुँचता है, परंतु ये सत्य है, ये सही है। अदन की वाटिका में उसने यही किया था, वो बना सकता है। अब वो ईमानदार थी, वो निष्कपट थी, परंतु उसने धोखा खाया। आदम ने धोखा नहीं खाया, बाइबल ने कहा, वो धोखे में नहीं आया, परंतु वो धोखे में आ गई थी, इसलिए वो उसे धोखा दे सकता है। और फिर भी पास्टर जाकर महिला प्रचारकों को अभिषेक करते हैं, भक्त गणों पर इस प्रकार अधिकारी ठहराते हैं, और ये बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक इसे दोषी ठहराती है। आप कहते हैं भाई ये ठीक है, उनके पास वे ठीक वैसे ही प्रचार कर सकती हैं। मैं जानता हूँ, बड़े बड़े प्रचारक वहाँ खड़े हैं, मैं जानता हूँ कि ये ठीक है। जैसे कि एक बार एक अन्य भाषा बोलने लगी, मैं प्रचार करता रहा। जब मैं बाहर आया, एक महिला ने मेरे पुत्र से कहा, कल आने वाली रात्रि के लिए मेरे पास संदेश है। कहा, जब तुम्हारे पिता प्रचार मंच पर आते हैं। कहा, अच्छा श्रीमती जी, आपका क्या अर्थ है? और उस रात्रि जब मैं तैयार हो गया, जब मैं वेदी की बुलाहट के लिए निश्चित हुआ, उसने बाल ऊपर को बांधे और अपने मुंह से ऊपर को खींचे और सब कुछ तैयार हो गई, और बीच में कूद पड़ी और ऊपर नीचे कूदने लगी, अन्य भाषा में बोलने और अनुवाद करने लगी। मैं प्रचार करता रहा और वेदी पर आने की बुलाहट करता रहा। भाई मैंने उस पर कभी भी जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, ये ठीक नहीं था। इसलिए तब बाइबल ने नहीं कहा, भविष्यद्वक्ता की आत्मा भविष्यद्वक्ता के वश में होती है। परमेश्वर मंच पर बोल रहा था, उसे बोलने दो। पौलुस ने कहा यदि किसी को कुछ प्रकाशित हुआ है तो जब तक दूसरा समाप्त ना कर ले शांत रहे। ये ठीक बात है। अब जब मैं बाहर आया तो इन लोगों ने कहा, ढेर सारे लोगों ने कहा, आज रात्रि आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। मैंने कहा, क्या कर रहा है, मैं क्या करता। कहा ठीक, जब उस बहन ने वो संदेश दिया, हालेलुया, वो था। क्यों? मैंने कहा, मैं प्रचार कर रहा था, वो क्रमबद्धता से अलग थी। ओ, कहा वो सिंहासन से बिल्कुल ताजा था और वो जो आप प्रचार कर रहे थे उससे ताजा था। ओ, अब केवल ये दर्शाता है या तो ये, और मैं ये कहता हूँ कि आपका सम्मान या फिर मूर्खता या अनादर या अनपढ़ों की शिक्षा जो परमेश्वर के विषय में अधिक नहीं जानते उस खरगोश से जो बर्फ के जूतों को जानता हो। अब मैं ये नहीं कहता कि ये मूर्खतापूर्ण टिप्पणी हो, क्योंकि ये उपहास करने का स्थान नहीं है, परंतु ये बिल्कुल सत्य है। एक व्यक्ति जो ये जानता होगा कि परमेश्वर भ्रम का रचने वाला नहीं है, वो एक शांति है। बाइबल वे नहीं जानते, वो जो जानते हैं कि ऊपर नीचे कूदना और अन्य अन्य भाषा बोलना, कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिला है, हालेलुया। मैंने खड़े होकर अफ्रीका में देखा है भूत सिद्धि वाले, और एक समय में 5,000 के द्वारा बातें बोली जाती हैं, ऊपर नीचे कूद रहे हैं, उनके पूरे मुख पर लहू है, भाषाओं में बोल रहे हैं और मनुष्य के कपाल से लहू पीते हैं, शैतान को बुलाते हैं और अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं, और फिर भी अन्य भाषा में बोलना परमेश्वर का वरदान है, परंतु ये पवित्र आत्मा का पक्का प्रमाण नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि सारे प्रेरणा से युक्त संत भाषा में बोलते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कभी कभी एक मनुष्य परमेश्वर से इतना प्रेरित हो जाता है कि जबकि जब तक कि आप अन्य भाषा में बोलने लगते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, परंतु मैं ये विश्वास नहीं करता कि कोई भी चिन्ह जो आपके पास है पवित्र आत्मा है। जी हाँ श्रीमान, मैं विश्वास करता हूँ कि एक समय होता है जब आप में विश्वास होता है, एक व्यक्ति के पास आप सीधे जाते हैं और उस छोटे बालक पर हाथ रखते हैं जिसे कैंसर है, जबकि 85 प्रचारक प्रार्थना कर चुके हैं और वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि उस माँ में उस बालक की चंगाई के लिए विश्वास है। परमेश्वर ये उसे देता है, वो मसीह की देह की सदस्य है। जी हाँ श्रीमान, मैंने इसका विश्वास किया है, मैंने ये होते देखा है, मैं जानता हूँ कि ये सत्य है। परंतु ये क्या है? कलीसिया को व्यवस्थित करना ताकि हम कार्य कर सकें। अब हम बाकी पद को समाप्त करें इसके पहले कि हम जाएं। जब तुमने सत्य का वचन सुना, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मोहर, छाप, छाप क्या है? मोहर वो पहली चीज है जो ये दर्शाती है कि एक कार्य समाप्त हो गया है, पूरा किया गया कार्य। अगली चीज ये स्वामित्व को दर्शाता है, और अगली चीज ये सुरक्षा को दर्शाता है, इसे बनाए रखता है। उदाहरण के लिए कहूँ, मैंने पेंसिल्वेनिया रेल रोड के लिए कार्य किया है। मैं अपने पिता के साथ रेल रोड में कार्य किया करता था। हम वाहनों पे लदान करते थे और हम यहाँ इस पैकिंग कंपनी में थे। हम टीन के बक्सों में डालते थे और कुछ को यहाँ रखते, कुछ को वहाँ रखते, कुछ को इस ओर रखते। परंतु इसके पहले वो वाहन मोहर बंद हो तो वहाँ निरीक्षक आता और वो उस पर धक्का लगाता, इस वाले को धक्का लगाकर सरकाता, उसे हिलाता, ओ इसे निराकृत करो। वे इसे वहाँ पहुँचने से पहले सब टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसे निराकृत करो, इन्हें बाहर निकालो, इसे फिर करो। निरीक्षक वाहन बक्स को निरस्तर कर देता। पवित्र आत्मा निरीक्षक है, वो आपको थोड़ा सा हिलाता है और आप बड़बड़ाते हैं। क्या आप परमेश्वर के समस्त वचन का विश्वास करते हैं? मैं यीशु के इस पुराने नाम पर विश्वास नहीं करता। इसे निराकृत करो, आप बड़बड़ाते हैं। देखिए, मैं दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं करता या इस प्रकार की बात में, अब भी बड़बड़ा रहे हैं, उन्हें बाहर निकालो। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कल, अच्छा एक प्रकार से, अब बकबक करते हैं, इसे बाहर निकालें। देखा, ये अब भी तैयार नहीं है। जी हाँ श्रीमान भाई, जब ये आमीन कहने के लिए तैयार है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? आमीन। क्या सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं? आमीन। तब निरीक्षक क्या करता है? हर चीज भली भांति और पक्की है, तू समाचार से भरी हुई। ओ, परमेश्वर का प्रत्येक वचन भला है, सारी चीजें सिद्ध हैं। मैं प्रत्येक वचन का विश्वास करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अब भी चंगा करता है? आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु कल और सदा एक सा है? आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा वैसे ही वास्तविक है जैसे कि ये कभी था? आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि ये वही आत्मा जो पौलुस पर आया हम पर भी आया? आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि ये हम पर वही कार्य करता है जो उन पर किया? आमीन। ओ अब ये कस रही है, देखिए अब कस रही है, हम द्वार बंद करने को तैयार हैं, ठीक है। तब निरीक्षक द्वार को बंद करता है, वो क्या करता है, वो उस पर मोहर लगाता है। तब वो यहाँ उतरता है और इन छोटे छोटे खम्भों को पकड़ता है और इस छोटी सी वस्तु पर पहुँचता है और इसे मोहर बंद करता है। अच्छा हो कि आप इसे न तोड़ें। यदि वे वाहन के ऊपर लादने वाले बड़े बक्स का उसका गंतव्य स्थान बोस्टन है, ये तोड़ा नहीं जा सकता। इस मोहर को जब तक वो बोस्टन ना पहुंचे, आपत्तिजनक दंडनीय अपराध है, और वो व्यक्ति जिसे अधिकार है इस मोहर को तोड़ सकता है, और केवल वही। ये ठीक बात है, ये अमूक निश्चित रेल रोड कंपनी का है, ये उनकी मोहर है, ये वाली, ये उनका बीमा है कि ये वाहन मोहर बंद किया गया है, ये वाहन तैयार है, ये उनका है। वे B&O पर पेंसिलवेनिया नहीं लिख सकते। आपको मोहर बंद होना है, और जब ये मोहर लग गई और जब मसीही सुसमाचार से भर गया, परमेश्वर की भलाई से परिपूर्ण हो गया, परमेश्वर की सारी भली वस्तुएं उसके खुले हृदय में रखी हैं, कार्य के लिए तैयार, उपयुक्त स्थान पर रखे जाने को तैयार, पवित्र आत्मा जो उसे करने को कहता है वो उसे करने को तैयार है, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया, संसार की सारी चीजों से पवित्र हो गया। जैसे ही ज्योति उसके पास आती है, ज्योति में चलता है, बढ़ रहा है, वो तैयार है, तब परमेश्वर उसके पीछे से संसार का द्वार बंद कर देता है और इस प्रकार से एक साथ लात मारता है और उसे प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा से मोहर बंद करता है। हालेलुया। कब तक? जब तक वो गंतव्य स्थान नहीं आता, इसे रेल रोड के मार्ग से अलग कर और इसे न तोड़कर न खोलें और देखें यदि सारी चीजें ठीक हैं। फिर से ये ठीक है, इसे छोड़ दें। निरीक्षक ने इसका निरीक्षण कर लिया। आप कब से मोहर बंद हैं? आपके छुटकारे के दिन तक के लिए, आप वहां तक के लिए मोहर बंद हैं। ठीक है, जब आप मरते हैं तब भाई बहनम आपके मरने के पश्चात के विषय में क्या है? आपने कहा कि आपके पास अब भी है, आपके पास ये सदा के लिए है। जीवन कहाँ से आरंभ होता है? वेदी पर से। ठीक वहाँ आप एक छोटा सा प्रतिबिंब देखते हैं, वो प्रतिबिंब है पवित्र आत्मा की छाप। उस समय ये छाया की छाया की छाया है, जैसे कि मैंने उस दिन कहा। परंतु जब आप मरते हैं तो आप उन सायों में चलते रहते हैं जब तक कि आप नमी में नहीं पहुंच जाते। नमी से एक छोटे टपकने वाले सोते पर, सोते से छोटी खाड़ी और छोटी खाड़ी से नदी और एक नदी से सागर। देखिए परमेश्वर का प्रेम, आप बस वही व्यक्ति हैं। इधर देखिए, बूढ़ा शाऊल, पुराना पिछड़ा हुआ, वो परमेश्वर के समीप से नहीं जा सकता, तो भी वो नष्ट नहीं था। निश्चय ही वो नहीं था, वो एक भविष्यवक्ता था, परंतु वो केवल परमेश्वर से अलग था। भाइयों, यही कारण है कि मैंने कहा आप नष्ट नहीं हैं। इसलिए तब स्मरण रखें, वो केवल परमेश्वर की इच्छा के बाहर था। इसलिए तब पहली बात आप जानते हैं, वो सहमत नहीं होगा। अब हो सकता है मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ठीक है, मैं एक आनंदित भक्त मंडली के लिए आज रात्रि बढ़ रहा हूँ। इसलिए तब आप जानते हैं, और पहली बात आप जानते हैं, ओ प्रभु, तब उरीम और तुमीम के पास गए। आप जानते हैं उरीम और तुमीम क्या था? ये छाती पर बांधने का बंधन था, ये एपोद जिसे हारून ने पहना, और ये सदा परमेश्वर सदा एक अलौकिक परमेश्वर रहा है, अलौकिक विधियों से उत्तर दे रहा है। और जब एक भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की और वह रहस्यवादी ज्योति उरीम तुमीम से नहीं निकली, तो वो गलत था। जब एक स्वप्न देखने वाला एक स्वप्न बताता है और उससे उरीम तुमीम ने चमक नहीं दी, मैं चिंता नहीं करता कि सुनने में ये कितना भला प्रतीत होता है, ये गलत था, ये ठीक बात है। और मैं चिंता नहीं करता कि कितनी डॉक्टरों की डिग्रियां आपके पास हैं और कितनी संस्था कितनी बड़ी है, जब आप भविष्यवाणी या प्रचार करते हैं ये इस वचन के अनुसार नहीं है, भाई आप गलत हैं। ये परमेश्वर का उरीम और तुमीम है। जब आप कहते हैं आप संसार के रचने से पहले चुने नहीं गए, तो वो नहीं चमकेगा, क्योंकि बाइबल ने कहा कि आप थे। जब आप ये कहते हैं कि आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, तो ये नहीं चमकता, क्योंकि बाइबल में किसी का भी बपतिस्मा इस प्रकार नहीं हुआ, केवल प्रभु यीशु के नाम में। ये नहीं चमकेगा, इसलिए कहीं पर कोई गड़बड़ है। इसलिए पुराने शाऊल को उरीम और तुमीम उत्तर नहीं देंगे, और वो स्वप्न भी नहीं देख सकेगा। वो इतनी दूर निकल गया, यहाँ तक कि स्वप्न भी नहीं पा सकता। इसलिए आप जानते हैं कि उसने क्या किया, वो भूत सिद्धि वाले के पास गया। वहाँ एक पुरानी भूत सिद्धि वाली थी, और उसने कहा, क्या आप शकुन निकाल सकती हैं? उसने कहा हाँ, परंतु शाऊल ने कहा है वो हर भूत सिद्धि वाले को मार डालेगा। उसने कहा मैं तुझे बचा लूंगा। साधारण व्यक्ति जैसी वेशभूषा थी। उसने कहा मेरे लिए भूत सिद्धि कार्य कर और मुझे मृत संसार में से बुलवा दे जो वहाँ पर चले गए हैं। अब इसे सुनिए, मेरे पास शमूएल भविष्यद्वक्ता की आत्मा को बुलवा दे। और वो दिव्य में चली गई, और जब उसने किया वो मुंह के बल गिर गई और उसने कहा मैं देवताओं को ऊपर आते देखती हूँ। देखिए वो मूर्ति पूजक है, देवताओं उनमें से दो या तीन जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा या इसी प्रकार से कुछ आप जानते हैं। उसने कहा मैं देवताओं को ऊपर आते हुए देखती हूँ। कहा उसका वर्णन कर, वो कैसा प्रतीत होता है, वो कैसा दिख पड़ता है। कहा वो दुबला पतला है और उसके कंधों पर कपड़ा पड़ा हुआ है, वो जरा भी नहीं बदला। उसने कहा ये शमूएल है, उसे इस कमरे में बुला ले यहाँ मेरे सामने। और ध्यान दें, जब शमूएल शाऊल के सामने, उसने कहा तूने मुझे क्यों बुलाया, और परमेश्वर का शत्रु हो गया। वो अब भी केवल शमूएल ही नहीं, परंतु अब भी भविष्यवाणी की आत्मा है। कहिए ये गलत है, हर कोई कहे ये गलत है, ये सत्य है। वो अब भी भविष्यवक्ता था, क्योंकि उसने कहा, उसने भविष्यवाणी की और कहा कल युद्ध तेरे विरुद्ध है और तू और तेरे लड़के कल युद्ध में मारे जाएंगे और कल इस समय रात्रि में तू मेरे साथ होगा। क्या ये ठीक बात है? वो अब भी भविष्यवक्ता है। अब आप कहते हैं ओ, परंतु ये तो भूत सिद्धि करने वाली ने किया। यीशु ने एक बार पतरस याकूब यूहन्ना को लिया और रूपांतरण वाले पर्वत पर चला गया और पर्वत की चोटी पर खड़ा था, और यीशु परमेश्वर अपने पुत्र को यथा स्थान पर रख रहा था, जैसे कि मैं ये करने का यत्न कर रहा हूँ उस रात्रि पुत्र को स्थान पर स्थापित करना। और जब उन्होंने किया, उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि वहाँ मूसा और एलिया खड़े हैं। वे बातें कर रहे थे, सहभागिता। छोटा सफेद झंडा आसपास नहीं ले रहा था या छोटे सफेद बादल आसपास मंडरा रहे थे, परंतु वे व्यक्ति थे, बातें कर रहे थे। मूसा चिन्हित न होने वाली कब्र में 800 वर्षों पहले गाड़ा गया था, और एलिया रथ पर सवार होकर 500 वर्षों पहले घर चला गया था, और यहाँ दोनों उसके सामने खड़े हुए बातें कर रहे थे इसके पहले कि वो कलवरी पर गया। हालेलुया। हमारे छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर दी गई है। मैं जल्दी जल्दी करूंगा, तब हम बंद करेंगे क्योंकि देर हो गई है, और हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे लगभग 5 मिनट और। 14वां पद पढ़िए, मुझे 13वें पद से पढ़ने दें, समझे, भूमिका के लिए। जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है जिस पर तुमने विश्वास किया। अब स्मरण रखें, उनके पास कौन सा उद्धार था? ये लोग इफिसुस के मसीही थे। वे अब देखिए, क्या आपने कुरिन्थियों पर ध्यान दिया? उसे सदा उन्हें बताना पड़ता था, जब मैं तुम्हारे मध्य में आता हूँ तो एक के पास भाषा है, एक के पास भाषा है, एक के पास भजन, एक के पास भविष्यवाणी, एक के पास। देखिए, वो उन्हें कुछ नहीं सिखा सका क्योंकि वे सदा इसी की इच्छा करते थे, ये या वो। इन लोगों में यही बात थी, परंतु उनके पास व्यवस्थित रूप में थी। उसने कुरिन्थियों को इस प्रकार का कुछ नहीं सिखाया, वो नहीं सिखा सका। कलीसिया व्यवस्थित नहीं थी कि वे ये सिखाता। अब वो इन लोगों को वास्तविक चीजें सिखा सकता था, जो कि तुम्हारे उद्धार का, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीराश का बयाना है, उसकी महिमा की स्तुति हो। मुझे इसे न छोड़ने दें। पवित्र आत्मा क्या है? अब फिर मैं बाकी बचे हुए को जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, यदि आप इतना और मेरे साथ सह सकें। उस रात्रि हम लोग कहाँ पर थे भाई माइक? जहाँ वे सब आनंदित थे और हर चीज शांत थी, वो सिद्ध प्रेम था। अब हर बार आप इस मार्ग से आते हैं, आप एक छोटी सी बूंद गिराते हैं, हर बार आप एक कदम उठाते हैं, आप कई इंचों समीप आ जाते हैं। जब ये पृथ्वी पर आता है तो आपको छाया की छाया की छाया में छाया मिली है। अब इतना पवित्र आत्मा आप में है, ये प्रेम है, परंतु ओ, आपको किसी चीज की प्यास है। ओ लोग बूढ़े लोगों के समान मैं वापस जाना कितना पसंद करता हूँ और फिर से 15-20 का हो जाऊँ। ओ मैं कुछ भी दे दूंगा, मेरा वो क्या भला करेगा। मैं 15 का हो सकता हूँ और आज रात्रि मर सकता हूँ, ये अनिश्चित है। क्या होता यदि आज रात्रि आप 15 के होते? आप कैसे जानते कि जब आज रात्रि आप घर पहुँचते हैं तो आपकी माता जीवित होगी या नहीं? आप कैसे जानते हैं कि आप घर पहुँचेंगे? आप कैसे जानते हैं कि आप कल जीवित रहेंगे यदि आप 12 वर्ष के हैं बिल्कुल स्वस्थ? आप एक दुर्घटना में मारे जा सकते हैं बिल्कुल मृत, आपको कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित है। देखिए यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, परंतु आप उसकी प्रतीक्षा में हैं। ये क्या है? ये इतना है कि आपसे इसकी प्रतीक्षा करवा रहा है। अब आप इसमें जाएं तब आपके पास अनंत जीवन है। अब ये क्या घटित होता है? ये एक बयाना है। किसी भी चीज पर बयाना क्या है? यदि मैं आपके पास कार खरीदने आऊं, मैं कहता हूं ये कार कितने की है? आप कहते हैं ये कार भाई ब्रैनम आपको $3,000 में पड़ेगी। बयाना क्या है? अच्छा मैं आपको $500 दे दूंगा। ठीक है, ये रहे $500, बाकी मैं आपको कभी और दूंगा जितनी जल्दी मैं दे सकूंगा। आप कार रखें, मैं आपको $500 देता हूँ, ये बयाना है। क्या ये ठीक बात है? अब इसे थाम लें, ये बयाना है, ये नगद अभी का भुगतान है। जब आप पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, प्रतिज्ञा की आत्मा आप पर छाप लगी, जो प्रतिज्ञा की छाप क्या है? प्रतिज्ञा की आत्मा उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। ये क्या है? ये बयाने का भुगतान है। ओ भाइयों, ओ प्रचारको, यदि ये बयाने के भुगतान है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो क्या होने जा रहा है? ये क्या होने जा रहा है? यदि ये है, यदि क्या हम अब आनंद करते हैं? बहुत, तब तक प्रसन्न है। मैंने 90 वर्षों की आयु को आते हुए देख चुका हूँ। मैंने एक बूढ़े प्रचारक को देखा जो एक रात्रि उठा, वो बाहर आया, उसने कहा इस प्रकार, प्रचार मंच पर आया और मैंने कहा ये बूढ़ा व्यक्ति प्रचार करने जा रहा है? उसने कहा अच्छा, धन्य है प्रभु, एक बूढ़ा काला व्यक्ति, बड़ा लंबा पुराना प्रचारक का कोट पहने हुए। मैंने कहा उन्होंने उनमें से कुछ युवा प्रचारकों को क्यों नहीं प्रचार करने दिया? ये बूढ़ा व्यक्ति ये कैसे प्रचार कर सकता है? उसने कहा अच्छा, उसने कहा भाइयों, उसने कहा आज मैं सुन रहा था कि भाइयों ने पूरे दिन प्रचार किया। उसने कहा इस विषय में कि यीशु ने पृथ्वी पर क्या किया, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसने स्वर्ग में क्या किया। उसने कहा आज रात्रि मैं अपना मूल पाठ अय्यूब 7:27 में से लूंगा। कहा जब ये पीछे वहाँ पृथ्वी के रचने से पहले कहा, जब उसने कहा कि भोर के तारों ने एक साथ मिलकर गाया और आनंद से चिल्लाए, इस प्रकार आरंभ किया। कहा आप ये जानते हैं वहाँ पीछे क्या कुछ घटित हुआ? उसने कहा आप जानते हैं। और स्वर्ग में क्या हुआ? वो सामने लाने लगा, वो समानांतर मेघ धनुष और दूसरे आगमन में नीचे ले आया। उस समय के विषय में पवित्र आत्मा ने उसे छुआ। जब उन्हें बूढ़े व्यक्ति की अगुवाई करनी पड़ी, वो लगभग 95 वर्ष का था, वो बस इस प्रकार का था, सारा झुका हुआ, केवल छोटा सा बालों का घेरा, आप जानते हैं इस प्रकार का। वहाँ पहुँचकर और उसने प्रचार करना आरंभ किया, कहा हालेलुया महिमा, और इस प्रकार से ऊपर नीचे कूद रहा था। मेरे प्रचार करने के लिए आपके पास पर्याप्त स्थान नहीं है, और धरातल से ऊपर उछला इस प्रकार से जितना जोर से वो उछल सकता था। और ये केवल बयाना है। ओ पवित्र आत्मा क्या करता है? ओ यहाँ अच्छा स्थान है, मुझे पढ़ने दें पहला पद अगले अध्याय का। क्या मैं पढ़ सकता हूँ? ये ठीक बात है, आमीन कहें। ठीक है, पहला पद दूसरे अध्याय का, जल्दी से सुने। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आपको उसने जिलाया, जिलाने का क्या अर्थ है? जीवित करना, बस मृत होने ही वाला, परंतु उसने आपको जिलाया केवल उस बयाने के पैसे के द्वारा। ये क्या होगा जब आप वास्तव में उस लाभांश को पा लेते हैं? ओ कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। कहा जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ना ही मनुष्य के हृदय में समाया, वो है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है भंडार में। परमेश्वर ये जानता है, समझे? आप ना बता सकने वाले आनंद की बात करते हैं और महिमा से परिपूर्ण। तुम जो पाप और अपराधों में मरे हुए थे, उसने आपको छाया की छायाओं के द्वारा मिलकर जिलाया। ये क्या होने वाला है जब आप छाया की छाया की छाया में आते हैं, एक छाया एक खाड़ी में, खाड़ी नदी में, नदी सागर में। और ये क्या है जब आप वहाँ छुटकारे में बिल्कुल नई देह के साथ हैं? आप एक युवा मनुष्य में एक बार पूर्ण रूप से फिर बदल जाते हैं, या एक युवा महिला में आप फिर कभी मरने नहीं जा रहे हैं? और आप पृथ्वी पर देखते हैं और सोचते हैं, मैं कुछ अंगूरों का आनंद ले सकता हूँ और कुछ अच्छे ठंडे पानी का, परंतु आप जानते हैं मुझे यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु किसी दिन यीशु आ रहा है और ये स्वर्गीय देह तिफोनी जिसमें कि मैं जीवित हूँ अब स्त्री के गर्भ से नहीं आएगी, ये अब और शरीर की इच्छा के द्वारा नहीं आएगी, परंतु क्योंकि वो बिना शरीर की इच्छा से जन्मा है, मैं इसके बिना जिलाया जाऊंगा। और किसी दिन वो बोलेगा और जो मसीह में मरे हैं जी उठेंगे, और वो देह जिसमें भी कभी एक समय रहा था महिमा युक्त देह में जी उठेगी, और मैं चलूंगा और मैं बोलूंगा और मैं जीऊंगा और मैं जीवन का आनंद लूंगा। हालेलुया! सारे महिमामय युगों में जो आने वाले हैं उस मसीह यीशु हमारे प्रभु में होते हुए। भाई आप वहीं पर हैं, यही सुसमाचार है, जहां कि मैं भी अपोलुस बस बता रहा है वो क्या है। मैं बाकी को पढ़ दूंगा और तब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। जब तक अधिकार में ना ले लें, ये जब तक पूर्ण अधिकार नहीं मिलता बयाना है, उसकी महिमा की स्तुति हो। इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर, मैंने सुना है कि तुम इन बातों में विश्वास करते हो, मैंने सुना है कि तुम वास्तव में पहले से चुन लिए जाने पर विश्वास करते हो, अनंत जीवन और उद्धार और आदि आदि, प्रभु यीशु मसीह में और सब संतों से प्रेम, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। स्वयं को आप पर प्रकट कर रहा था, अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ रहा था, सामर्थ से सामर्थ में, महिमा से महिमा में, पीछे नहीं हटता और परंतु महिमा से महिमा में बढ़ता जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। आंख, वे आंखें आपकी समझ की। आप जानते हैं कि बाइबल में कहा गया है कि तुम अंधे थे और ये ना जानते थे, परंतु यहाँ पौलुस ने कहा मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि तुम्हारी समझ की आंखें, आप अपने हृदय से समझते हैं, यही है जिस विषय में वो बात कर रहा है। आप अपनी आंख से देखते हैं परंतु आप अपने हृदय से देखते हैं, आप ये जानते हैं, ठीक है। ये महिमा का परमेश्वर है, देखते हैं 18वां पद, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर से जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। ओ, वे कहते हैं सामर्थ चली गई, सामर्थ तो अभी तक पहुंची नहीं है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, आप जिन्होंने उसकी महान सामर्थ के कार्य करने पर विश्वास किया, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ आप पर उंडेलेगा, समझे, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दहनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। नहीं, अच्छा हो कि मैं ना। निश्चय ही हम समस्त रात्रि इस पर ले सकते थे। प्रत्येक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हरेक नाम क्या है? हरेक नाम हर व्यक्ति का नाम धारण करेगा क्या? समस्त स्वर्ग को यीशु नाम दिया गया, सारी कलीसिया को यीशु नाम दिया गया, हर चीज को यीशु नाम दिया गया, क्योंकि केवल यही नाम है जो कभी परमेश्वर का था। वो यहोवा कहलाया, यहोवा येरे, प्रभु का दिया गया बलिदान यहोवा राफा, यहोवा जो तुझे चंगा करता है, यहोवा प्रभु का झंडा मनुष्य और यहोवा विभिन्न यहोवा, वो भोर का तारा कहलाया, वो पिता कहलाया, वो पुत्र कहलाया, वो पवित्र आत्मा कहलाया, वो अल्फा कहलाया, वो ओमेगा कहलाया, वो आदि आदि कहलाया, वो अंत कहलाया, वो डाली कहलाया, वो हर प्रकार की उपाधियों में कहलाया, परंतु उसका एक नाम था। इसी विषय में मत्ती बात करता है जब उसने कहा इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को सिखाओ और उन्हें नाम में बपतिस्मा दो, न कि नामों में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। पिता नाम नहीं है, पुत्र नाम नहीं है और पवित्र आत्मा नाम नहीं है, ये तो उपाधियों के नाम है, ये तो तीन गुणों के नाम है जो कि एक परमेश्वर से संबंधित है। उसका क्या नाम था? स्वर्गदूत ने कहा तू उसका नाम, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा करेगा। यही कारण है कि वे सब बाइबल में इसी प्रकार से बपतिस्मा देते हैं। यही है कि संत अगस्तीन ने इंग्लैंड के राजा का बपतिस्मा मसीह की मृत्यु के 150-200 वर्षों पश्चात यीशु मसीह के नाम में दिया। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है। अब यदि मेरे शरीर में सब वस्तुओं पर सामर्थ है तो जो मेरा शरीर है वो मैं हूँ। क्या ये ठीक बात है? मैं यही हूँ, आप मुझे इसी प्रकार से जानते हैं। क्या ये ठीक बात है? अच्छा, तो वो सब जो परमेश्वर था वो यीशु में उंडेल दिया गया, क्योंकि वो शरीर में परमेश्वर की परिपूर्णता था। क्या ये ठीक बात है? और वो सब जो यीशु था उसने कलीसिया में उंडेल दिया। ये कार्य जो मैं करता हूँ इन्हीं कार्यों को तुम भी करोगे और इससे भी बड़े तुम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ओ, मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ, मैं कितना इससे प्रेम करता हूँ। उस दिन मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जो कि मेरी यात्रा के विषय में, जो सेवा मैंने अफ्रीका में की उस विषय में लिखी थी। इसके पहले कभी नहीं पढ़ी थी। कितनों ने ये पुस्तक कभी पढ़ी है? भविष्यवक्ता की अफ्रीकी यात्रा। वहाँ पर उसमें मैंने एक छोटे से इंडियन लड़के को देख रहा हूँ। कितनों ने वो चित्र देखा है? मैंने सुना कि कोई अमुक सुसमाचार सुनाने वाला बीमारों के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहा था, लगभग 15 या अधिक। उसने कहा मैंने अपने जीवन में कभी भी आश्चर्यकर्म होते नहीं देखा। उसने कहा मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने कहा उन्हें सिर दर्द था, ठीक हो गए। मैंने लोगों को कहते सुना है कि उनके पेट में दर्द था, चंगे हो गए और आदि आदि। परंतु एक आश्चर्य कर्म, कुछ जो सृजा गया और कुछ बना दिया गया। मैं सोचता हूँ कि उस लड़के को वहाँ पर खड़ा हुआ होना चाहिए और देखा उस भारतीय लड़के का पैर चारों ओर से लगभग इतना बड़ा था उसमें से एक, और दूसरा वाला साधारण मनुष्य का सा पैर। और यदि आप उसके बनावटी पैर पर ध्यान दें तो वो उसका जूता लगभग 14 इंच का था, यानी इस प्रकार से 15 इंच ऊंचा। उसके तले में एक लोहे की प्लेट थी। उसका जूता दो लंबी छड़ों में जो खड़ी थी लगा था। वो वहाँ तक आया जहाँ मैं खड़ा हुआ था। वे उसे वहाँ तक लाए। उसके दो बेसाखियाँ थीं। वो उस लोहे के जूते को उठाकर और उसे नीचे धम्म से रखता इस प्रकार से। मैंने उसके पैर की ओर देखा, वो चारों ओर से इतना बड़ा था। अब वे लोग मुसलमान हैं, मुसलमान। क्या आप लोगों को स्मरण है पिछले रविवार जब मैंने उस कागज को पढ़ा था कि क्या लिखा था? यहाँ अफ्रीका से मेरे स्वयं के पास है, मेरे वहाँ से मिशनरी यात्रा से वापस आने पर दिया गया भाई स्टिकर के द्वारा। उसमें लेख है किस प्रकार से बिली ग्राम इस पर वापस आ गया। ठीक है, उन्होंने, उन मुसलमानों ने उन्हें सीधा समुद्र में धकेल दिया। क्या बात है, मिशनरी लोग कार्यस्थलों को छोड़ रहे हैं, वहाँ अधिक रुकने का कोई लाभ नहीं है, वे लगभग मार भगाए गए। मैं बिली ग्राम से प्रेम करता हूँ और सोचिए वो परमेश्वर का बहुत अच्छा दास है, परंतु बिली ग्राम को उस पर क्या अभियोग लगाना चाहिए था? एक मिनट रुकिए, मैं सुसमाचार का सेवक हूँ। आप पुराने नियम में विश्वास करते हैं, आप कहते हैं यीशु एक मनुष्य को छोड़ और कुछ नहीं था। मैं इस विवाद पर आपको चुनौती देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि बिली ग्राम परमेश्वर का एक दास है, परंतु बिली ग्राम को उस पर क्या अभियोग लगाना चाहिए था? एक मिनट रुकिए, मैं सुसमाचार का सेवक हूँ।
आप पुराने नियम में विश्वास करते हैं और आप कहते हैं यीशु एक मनुष्य को छोड़ और कुछ नहीं था। मैं इस विवाद पर आपको चुनौती देता हूँ। मैं शैतान की चुनौती को लेने में विश्वास नहीं करता, नहीं श्रीमान, परंतु मैं पलटकर उसे चुनौती देता और कहता, मैं और आप एक साथ आते हैं, मैं एक दिव्यता में डॉक्टर हूँ, बिली ग्राम दिव्यता का डॉक्टर हूँ। मैं इस बात पर आपको चुनौती देता हूँ और मैं आपको सिद्ध करूँगा कि यीशु ही मसीह था। अब जब ये दिव्य चंगाई पर आता है, मेरे पास वे वरदान नहीं है, परंतु हमारे पास एक भाई है जिसके पास ये है। अब यदि आप लोगों को वहाँ लाना चाहते हैं, मैं उनमें से एक को बुलाऊं, ओरल रॉबर्ट या कोई किसी जिसके पास महान सेवा है, जो वास्तव में वहाँ पहुँचे और तब देखें कि क्या घटित होता है। कहें, मसीहत वो नहीं जो आप सोचते हैं। अब प्रत्येक लज्जित अनुभव करता है क्योंकि वो बस वहाँ से निकल गया और उसे छोड़ गया। ठीक है, अब मैं शैतान में विश्वास नहीं करता कि वो आपको चुनौती दे। मैंने इस प्रकार से उसके मुख पर थूका भी और उसके पास से चला गया, ये ठीक बात है। परंतु जब ये उस स्थान पर आता है जहाँ बिली ये कह सके, उस मुसलमान को ये अनुभव करवा सके कि वो ऐसे ही एक छोटी सी घास है, वो बाइबल को ले सकता था और यशायाह 9:6 लिया और कहा, वो किसके विषय में बात कर रहा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। ये कौन मनुष्य है, ये कौन था जिसके विषय में वो बात कर रहा है, ये कौन भविष्य दत्ता है, ये कौन मसीहा है जिसे आना था। मुझे दिखाएं कि उसने स्वयं को मुसलमानों में कहां उत्पन्न किया। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मुझे ये मोहम्मद में दिखाएं। वो कैसे चिल्लाया, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया और आदि आदि। मुझे अपने ही वचन में दिखाएं, अपने नियम में। वो क्यों उस मुसलमान को पीटता इतनी बुरी तरह कि वो ना जान पाता कि वो कहाँ है, ये ठीक बात है। परंतु जब कागज पलटा गया, यही था जिसने आघात पहुंचाया, जिसने मेरे हृदय को छाला। जब वहाँ कहा गया, यद्यपि बिली को पीछे हटना पड़ा और पीठ घुमानी पड़ी, कैसे एक मुसलमान कह सकते हैं कि ये गलत था। कहा, जब आदरणीय विलियम बर्नम दक्षिणी अफ्रीका डर्बन में थे, बिना विवाद के एक के बाद दूसरा आश्चर्यकर्म, दिव्य सामर्थ, जब 10,000 मुसलमानों ने एक समय झुककर अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया। बिल्कुल ठीक, वे इस विषय में जानते हैं, वे मूल लोग इस विषय में जानते हैं, आप मुझे ना बताएं। एक बार एक ने यीशु के पास आकर कहा, रब्बी, आप जानते हैं कि वो एक फरीसी था। कहा, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, हम ये जानते हैं क्योंकि कोई मनुष्य ऐसे कार्य नहीं कर सकता जो तू करता है जब तक परमेश्वर उसके संग ना हो। हम ये जानते हैं परंतु हम बस इसे स्वीकार नहीं कर सकते, देखा, क्योंकि यदि हम करते हैं तो हमें हमारी कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाएगा, देखिए हमारा सम्मान चला जाएगा। और इसलिए यीशु ने कहा, उसे बताना आरंभ किया कि उसे फिर से जन्म लेना चाहिए। उस मुसलमान लड़के पर जब वो वहाँ खड़ा था, यहाँ उसका चित्र है, कैमरा एक झूठ को नहीं लेगा, वहाँ वो खड़ा हुआ है, एक पैर जो कि बहुत ही छोटा था, लगभग 14 इंच, दूसरे वाले से उस लोहे के जूते पर खड़ा हुआ था। उससे कहा, मैंने कहा, आप अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं श्रीमान, अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अनुवाद करने वाले ने कहा, वो अंग्रेजी नहीं बोलता। आप कितने समय से इस दशा में हैं? अनुवादकर्ता ने उससे पूछा, जन्म से। क्या आप पैर को हिला सकते हैं?
नो सर।
नहीं श्रीमान। क्या आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ। मैंने कहा कि आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे यदि वो आपको चंगा कर देगा? मैं यीशु मसीह को अपना बचाने वाला स्वीकार कर लूंगा यदि वो मुझे चंगा कर देगा। यदि वो इसे चंगा कर देगा, वो पैर उस जैसा हो जाता है, तो आप उसे स्वीकार करेंगे? मैं करूंगा। अच्छा परमेश्वर, आप क्या करेंगे, ये अगली बात है। सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया। भाई माइक, यही अनुभव है जिसकी मैंने कुछ मिनट प्रतीक्षा करी कि देखूं कि वो क्या करने जा रहा है, और मैंने उधर की ओर देखा, मैंने देखा कि लड़का जा रहा है दीवार के सहारे सहारे, वो इस प्रकार से जा रहा है। मैंने कहा कि आप में से कितने मुसलमान इसे स्वीकार करेंगे? यहाँ मुसलमान लड़का है, इसे देखिए, उसे वहाँ खड़ा कर दीजिए। मैंने कहा, आप डॉक्टर लोग, आप उसे देखना चाहते हैं, वहाँ वो खड़ा है। ओह, आप जानते हैं तब आप कहाँ पर हैं, देखिए आप जानते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं। कोई नहीं, वहाँ पर वो था। मैंने कहा, पुत्र यहाँ आर पार चलो, और उन्होंने उसे लिया, यहाँ वो आता है, टलम्प टलम्प। मैंने कहा, ऐसा लगता है 12-14 इंच छोटा है, लगभग इतना। जी हाँ, मैंने कहा, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उसे चंगा कर सकता है। क्या आप मुसलमान इसका विश्वास करेंगे और उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? वहाँ हजारों वे काले हाथ ऊपर उठे सारे में इस प्रकार से, प्रभु अब वो समय है। मैंने कहा, स्वर्गीय पिता, यदि तूने मुझे कभी उत्तर दिया है तो अब आप मुझे उत्तर दें, क्योंकि ये तेरी महिमा के लिए है, ये आपके लिए है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस लड़के को चंगा कर। इस प्रकार से मैंने उस पर प्रार्थना की। मैंने कहा, अपना जूता उतारो। उसने मेरी ओर विचित्र रीति से देखा, वो अनुवादक। मैंने कहा, अपना जूता उतारो। उसने उसके फीते खोले, क्योंकि मैंने दर्शन देख लिया था कि क्या होने जा रहा था। उसने उस चीज को उतारा। जब उसने उसे उतारा और मेरी ओर चला, दोनों पैर वैसे ही साधारण थे, दोनों पैर जैसे नए चल रहे थे। मैंने कहा, तुम आगे पीछे आना जाना चाहते हो? वो आगे पीछे चलते हुए इस प्रकार से चिल्लाने लगा, नहीं समझ पाया कि क्या करूं। इस प्रकार से चल रहा था, उसने कहा, ओ अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा, यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, फिर जीसस। इस प्रकार से मैंने कहा, क्या कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? जूलियस स्टेस्क्लेव, कितने उसे जानते हैं? भाई स्टेस्क्लेव यहाँ आराधनालय में आते हैं, अभी हाल ही में जर्मन चले गए। कहा, भाई बनम, एक मिनट, फोटोग्राफर को बुलाने के लिए, जल्दी। मैं क्या उसकी तस्वीर उतार सकता हूँ? मैंने कहा, स्वयं कर लीजिए, इधर आओ, अपने जूते को यहाँ खड़ा करो। वो इस प्रकार से खड़ा हुआ, वहाँ उस लड़के की तस्वीर उतारी। दोनों पैर जैसे ठीक होते हैं और सीधे जितने वे हो सकते हैं। यहाँ उसका पुराना जूता उसके साथ लगा, भुजा कवच इस प्रकार से। मैंने कहा, आप में से कितने मुसलमान अब मोहम्मद का भविष्यवक्ता होने को अस्वीकार करेंगे और यीशु को परमेश्वर का पुत्र होने का विश्वास करेंगे और उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? दसियों हजार हाथ हवा में उठे। हालेलुया। वे नहीं चाहते, वे इसे वैसे ही बनाए रखना का यत्न करते हैं, क्योंकि हम पवित्र शोर मचाने वाले लोग हैं। वे हमें यही कहते हैं, देखा, ठीक वैसे ही परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ रहा है। वो अपनी कलीसिया को सही स्थान पर रख रहा है। वो आगे बढ़ते हुए कर रहा है उस सबसे ऊपर बहुतायत से जो हम कर सकते हैं या सोच सकते। वो आज भी वही परमेश्वर है जैसे वो पहले कभी था। इसलिए मेरे छोटे मित्रों, अब मैं आपको कुछ बता दूं। मेरे प्रिय बहुमूल्य लोगों, आप जो इस देश में सुनते हैं और दूसरे टेप के देशों में जो समुद्र पार होंगे, जहाँ कहीं भी आप हैं, भयभीत ना हो, सब चीजें ठीक हैं। पिता परमेश्वर संसार के रचने से पहले हर बात को जानता है जो होगी। सारी चीजें एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। आप उससे प्रेम करते हैं, अपना हृदय सही रखें और स्मरण रखें। जब ये श्वास इस जीवन से चली जाती है, आप बूढ़े लोग या आप युवा लोग और आप माताएं, जब आप अपने छोटे छोटे बालकों को मरते देखती हैं, वो छोटी लड़की, वो 8 दिन की या 5 दिन की भी नहीं थी जब वो मर गई, वो एक सुंदर युवा महिला होगी जब आप उसे देखेंगे। वो बूढ़े दादा जो झुक गए हैं, वो कठिनता से ही देख पाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब आप उसे देखते हैं, दादी को, वो एक बढ़िया सुंदर युवक होगा, उतना ही युवा जैसे 20 वर्ष का शानदार युवावस्था में था, और वो सदा वैसे ही रहेगा। आप उसका हाथ छू सकते हैं, आप उसके साथ हाथ मिला सकते हैं, आप अपने हाथों को उसके गले में डालेंगे, परंतु वो पति नहीं होगा, वो एक भाई होगा। ओहो प्रभु, वो पति से भी अधिक बढ़कर होगा। आप सोचते हैं कि आप उससे प्रेम करती हैं, निश्चय ही आपने किया, परंतु वो पीलियो था। जब आप एगापो ना पाए, प्रतीक्षा करें, जब तक वास्तविक दिव्य प्रेम पकड़े, तब देखिए कि क्या है। ये धधकते हुए ढेर के समान है, ये अच्छा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। केवल एक ही परामर्श देता हूँ जो आपको करना है मेरे मित्रों, वो ये है। थोड़ी देर के बाद क्या आप चाहेंगे कि मैं फिर कभी वे दो अध्याय लूं? प्रभु, चटाकुआ से पहले मैंने थोड़ा विश्राम किया। अब मैं ये बातें उन सभाओं में प्रचार नहीं कर सकता। वहाँ पर बहुत सारे विभिन्न विश्वास हैं, समझे। केवल यही अकेली कलीसिया है, समझे। मैं नहीं कर सकता, यहाँ मेरे पास अधिकार है कि मैं जो चाहूँ प्रचार करूँ। ये मेरा आराधनालय है, देखा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ कि वे लोग बच गए हैं। जी हाँ श्रीमान, मैं सच में ये विश्वास करता हूँ। परंतु ओ, आपको कितना और चलना है जब आप जानते हैं कि आप कहाँ चल रहे हैं? कितना और जानते हैं, केवल ये जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप देखिए, बजाय इसके लड़खड़ाते रहें, ठोकर खाते रहें, हम केवल ज्योति में खड़े हों, ज्योति में चलें और जाने की किस ओर बढ़ रहे हैं, ये सत्य है। प्रभु आपके संग रहे। और यदि आप में से प्रत्येक जो अब यहाँ पर है, यथा स्थान पर रखे नहीं गए हैं, आप एक गृहिणी को छोड़ और कुछ नहीं हो सकती हो। अच्छा, आप कहते हैं, भाई बहन, मैंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, मैं प्रचारक नहीं हूँ। संभव है परमेश्वर आपको यहाँ बालकों के परिवार के पालन पोषण के लिए लाया हो। उस बालकों के परिवार से संभव है बालकों के द्वारा दूसरा परिवार आए, वो एक प्रचारक होगा जो लाखों प्राणों को मसीह के पास भेजे। आपको यहाँ होना है, आप यहाँ उद्देश्य के लिए हैं, क्या आप जानते हैं? अच्छा, आप कहते हैं, सर, जो मैंने कभी किया है कि उन पुराने मिट्टी के ढेलों को हेरों से फोड़ा है, और मैं प्रत्येक सांझ को निकलता हूँगा, नहीं जान सका कि अपने बालकों को कैसे पालन करूँगा। मैंने एक बेचारे निर्धन व्यक्ति को बिना जूते के देखा, मैं बैठ गया और रोया। मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी और मेरी माँ आराधना ले गए। आप चिंता ना करें भाई, आप केवल उससे प्रेम करते रहें, उसके पास आपके लिए उद्देश्य है। आप केवल ठीक बने रहें जिस प्रकार से आप हैं, केवल आगे बढ़ते जाएं, समझे। संभव है आपने कभी भी उपदेश ना दिया हो, परंतु हो सकता है आप उसके जो प्रचार करेगा उसके बड़े दादा हो। क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर ने श्रेय दिया, हम देखें कि उसका क्या नाम था, लेवी, उसने दशमांश दिया जब वो अब्राहम के अंदर था, जब मलकीसेदक उससे मिला। कितने ये जानते हैं? और हम जरा देखें, अब्राहम ने इसहाक को जन्म दिया, इसहाक ने याकूब को, याकूब ने लेवी को जो कि पिता था, दादा, परदादा। जब वो देह में था, अपने परदादा के वंश में था, बाइबल ने उसको इस बात का श्रेय दिया कि उसने मलकीसेदक को दशमांश दिया। ओह प्रभु, भाई, ओ वहाँ एक साधारण अंग्रेज, वहाँ एक रात्रि उसका इंग्लैंड में मत परिवर्तन हुआ। उसने कहा, मैं इतना आनंदित हूँ। जी हाँ, ये जानकर कि बहुत ही आनंदित हूँ कि ये सत्य है। और किसी महिमा वाले दिन, मैं नहीं जानता कि वो दिन कब आएगा, परंतु यदि वो एक दर्शन था, मैं नहीं कहता कि मैं यहाँ पर था। स्मरण रखें, सदा इस बात को मस्तिष्क में रखें। संभव है टेप रखने वाले यही करते हैं। चाहे मैं दर्शन में था या आत्मा में ले जाया गया, मैं नहीं जानता, परंतु ये उतना ही वास्तविक था जैसे कि मैंने अपने इस भाई नेविल को पकड़ा, इतना ही वास्तविक। और मैं उन लोगों को देख सकता था और उन लोगों से बात कर सकता था, और वहाँ मेरी पहली पत्नी खड़ी थी। वो ये नहीं चिल्लाई, मेरा पति, उसने कहा, मेरा प्रिय भाई। वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो वर्षों पहले साथ साथ जाया करती थी। संभव है उसके कुछ संबंधित यहाँ बैठे हों। एलिस लुइस, यूटिका से, बहुत ही भली ईमानदार मसीही, जीवन में थोड़ी देर से विवाह किया और पहला बालक हुआ, जन्म के समय मर गया। एलिस लुइस, उसे देखने मैं अंतिम संस्कार गृह में गया। अभी मैं घर पहुंचा, मैंने सुना वो मर गई। मैं वहां गया, वहां कमरे में कोई नहीं था। मैंने कहा, क्या यहां कोई महिला है? श्रीमती, उसका नाम इमिर्क था और उसने एक अच्छे मसीही लड़के से विवाह किया और वो एक बहुत ही अच्छी मसीही लड़की थी। मैं उस लड़की के साथ सब जगह रहा, सब प्रकार की जगहों में और सब कुछ, और बच्चे ही थे 18-19 वर्ष के, हर जगह। भले मसीही, इस बात को छोड़ और कुछ भी कभी नहीं जाना कि वो एक वास्तविक मसीही थी और मैं एक पापी था, परंतु मैं उसके साथ गया। मैं गया और उसका पति एक नया जन्म पाया हुआ मसीही था, वास्तविक पुरुष, और मुझे नहीं मालूम, मुझे पता लगा कि वो मर गई थी। मैंने ये अखबार में देखा था और मैं नीचे गया और उन्होंने मुझे बताया, और मैं वहाँ पूट्स के पास गया और मैंने कहा, क्या आपके पास श्रीमती इमरकी हैं? उसने कहा, बिली, वो वहाँ कमरे में है। मैं भीतर गया और वहाँ बॉक्स की एक ओर खड़ा हुआ। मैंने सोचा, एलिस, मैं घोर गंदगी के अंधेरे में था, मैं अंधेरे मार्गों पर था, तू और मैं एक साथ राहों पर चले और नदी के पार गए। जब उनके पास पुरानी रंग नौकाएं हुआ करती थीं, हम बैठ जाते और उसमें विशेष ऑर्गन की धुन पर ऊपर नीचे गलियों में, तुम क्या ही महिला थीं। मैं तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर का कैसे धन्यवाद करता हूँ। मेरी प्रिय बहन, विश्राम करो, परमेश्वर की शांति में विश्राम करो। और उस रात्रि दर्शन में वहाँ वो मेरे पास भागती हुई आ रही थी। उसने कहा, मेरे धन्य भाई, और अपने हाथों को मेरे चारों ओर डाल दिया। ओ ओ भाई और बहन, इसने मुझे बदल दिया, अब मैं वैसा कभी नहीं हो सकता। ये इतना वास्तविक है, ये इतना वास्तविक था जैसे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए वहाँ कोई भय नहीं है। इससे पहले कि रात ढले, मैं मर सकता हूँ। मैं अपने छोटे लड़के जोसेफ का पालन पोषण करना चाहता हूँ। मैं उसे प्रचार मंच पर देखना चाहता हूँ, जब मैं इस बाइबल को ले सकता हूँ। जब मैं एक स्थान पर पहुँचता हूँ, मैं जोसेफ को प्रचार मंच पर प्रचार करते देखता हूँ, एक नवयुवक के समान जो पवित्र आत्मा से भरा हो, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक उस पर, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो एक भविष्य रखता होगा। और उस दिन जब मैंने इसे 6 वर्षों पहले देखा था, इसके पहले कि उसका जन्म हुआ, आपको स्मरण होगा, मैंने आपको बताया था कि वो आ रहा है। स्मरण कीजिए जब मैंने उसे ठीक वेदी की एक ओर से पुकारा, ये न जानते हुए कि मैं क्या कर रहा हूँ, बालकों को समर्पण। मैंने कहा, जोसेफ तू भविष्य रखता है। और एक दिन बाहर आंगन में खड़ा हुआ था, वो मेरे पास अंदर आया और उसने कहा, पिताजी क्या यीशु के पास आपके जैसे हाथ हैं? और मैंने कहा, हाँ पुत्र क्यों? उसने कहा, मैं अपनी साइकिल पर बैठा हुआ था, सारा की प्रतीक्षा कर रहा था, वो उसकी छोटी बहन है, कि विद्यालय से घर आने के लिए वहाँ बाहर बैठा हुआ था। मैं उसे सड़क पर नहीं जाने देता, वो पीछे इस प्रकार बैठा हुआ था। और कहा, मैंने ऊपर देखा और कहा, जब मैंने देखा तो वहाँ आपके जैसा हाथ सफेद अस्तीन के साथ मेरे ऊपर, और बोला वो ऊपर चला गया। कहा, क्या वो यीशु का हाथ ऊपर जा रहा था? मैंने माँ की ओर देखा और माँ ने मेरी ओर देखा। हम श्री वुड के यहाँ थे, वो जहाँ भी हैं यहाँ पर बैठी हैं। हमने उससे प्रश्न उत्तर किए आगे पीछे और हर प्रकार से जैसे कर सकते थे। ये एक दर्शन था, ये उसने देखा। जब मैं छोटे जोसेफ को उस समय देखता हूँ, खड़ा हुआ है, मैं आशा करता हूँ मैं उसे विवाहित देखने के लिए जीवित रहूंगा यदि यीशु रुका रहता है। मैं एक बूढ़ा मनुष्य हूँ, सफेद बाल यहाँ मेरी गर्दन के चारों ओर है। मैं भेज चुका हूँ, मैं 20 या 30 लाख लोगों को मसीह के पास भेजना चाहता हूँ यदि संभव हो सका। ये मेरा इरादा है कि सुसमाचार को सारे संसार के कोने में प्रचार करूँ। जी हाँ श्रीमान, इसलिए मेरी सहायता करें परमेश्वर, मैं ये करूँगा। इसलिए जब मैं उस समय को आते हुए देख सकता हूँ भाई माइक, मैं माँ मैडा के समय को देख सकता हूँ। मैंने उसे पुकारा, मेरी प्रिय, देखिए वो, हम बूढ़े हो रहे हैं, देखिए उसके बाल सफेद हो रहे हैं, और हम जाते हुए देखें क्षीण हो रहे हैं। रिबेका, मैं रिबेका के लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ। उसकी संगीत शिक्षिका ने मुझे उस रात्रि बताया, कहा, ओ यदि वो इसी प्रकार से बनी रहे। भाई बर्नम कहती है ये कठिन है कि वो क्या करेगी, देखिए संगीत में बढ़ रही है। मैं उसे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं सारा को ऑर्गन पर चाहता हूँ, बेकी पियानो पर, मैं जोसेफ को प्रचार मंच पर। जब मैं इसे घटित होते हुए देख सकता हूँ, और मैं और मामा धीरे धीरे चलते हुए अंदर आ सकते हैं, और अपनी अपनी पुरानी छड़ी पर किसी रात्रि सड़क पर चलते हुए, और मैं भीतर देख सकता हूँ, और अपने पुत्र को पवित्र आत्मा के अभिषेक में पवित्र आत्मा के साथ इसी संदेश को खड़े हुए प्रचार करते हुए देखता हूँ। मैं इस पुरानी पुस्तक को लेना चाहता हूँ और कहता हूँ, पुत्र ये यहाँ पर है, ये तुम्हारी है, तुम इसके पक्ष में खड़े रहो और एक भी वचन के साथ समझौता नहीं करना। प्रिय, तुम इसके साथ बने रहना, तुम चिंता ना करना, चिंता ना करना कि कौन तुम्हारे विरुद्ध है, कौन विरोध, परमेश्वर तुम्हारी ओर है। तुम हम वचन को उसी प्रकार से प्रचार करना जैसा कि वो वहाँ पर लिखा है, और पिताजी तुम्हें नदी के पार मिलेंगे। मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ और उसे अपनी बाहों में लूँ, मेरी पत्नी और यर्दन के पार जाऊँ। उस समय तक परमेश्वर मुझे कार्यस्थल में ईमानदार स्थिर रहने दे, मुझे होने दे, मैं चिंता नहीं करता जो भी मूल्य हो या कितना, जो मैं क्या करता हूँ या ये वो, जो भी हो, मुझे ईमानदार और परमेश्वर के जीवित वचन के प्रति सच्चा होने दे, ताकि जब वो दिन आए और मैं पार होकर वहाँ जाऊँ और पार देखकर और कहूँ, मेरे बहुमूल्य मित्र तुम वही हो, मेरे बहुमूल्य भाई, मेरे बहुमूल्य बहन। युवा प्रचारक, बाहर कार्य क्षेत्र में जाओ, कार्य में स्थिर रहो। तुम सब युवा प्रचारकों और चीजें इधर उधर ना बैठो, खाली ना बैठो और कुछ ना करो, बाहर निकलो और एक प्राण को जीतो, कुछ करो, बढ़ो, कार्यशील हो जाओ। युवा प्रचारकों, रुको मत, परमेश्वर आपके हृदयों को आशीषित करे। वो मुझे स्मरण करता है जब मैं लगभग उस आयु का था, मैं समझता हूँ संभव है उससे छोटा, मैं लगभग 21 वर्ष का होऊंगा जब मैंने वो कोने का पत्थर वहाँ रखा। मुझे याद है मैं नीला कोट पहना करता था और सफेद पैंटे, और वहाँ खड़ा हुआ, और 31 वर्ष पहले वो कोने का पत्थर वहाँ रखा। देखिए मैं कितना बड़ा था, मैं लड़का ही था, बस वहाँ खड़ा हुआ उस कोने के पत्थर को रख रहा था। मैंने एक भी वचन पर समझौता नहीं किया, मैंने उसे ठीक वैसा ही रखा जिस प्रकार मैंने कोने का पत्थर रखा। वहाँ उसमें मेरी गवाही रखी है जहाँ मैंने बाइबल के पन्ने पर ये लिखा था, और उसे फाड़ा और उसे कोने के पत्थर में रखा, और वो अब भी वही है। और ये होने पाए कि स्वर्ग में ये परमेश्वर के अनंत वचन के पन्नों में लिखा हो, अंत तक मैं सत्य पर खड़ा रहूं। आइए एक क्षण के लिए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। इस रात्रि समाप्त करते हुए, इन्हें बंद करते हुए, एक अध्याय जो कि न्यायोचित नहीं है, आपको दूसरा भी लेना है, कैसे वो आगे बढ़ता है और कलीसिया को उसके स्थान पर रखता है। किसी समय मैं ये आपके पास लेकर आऊंगा, परमेश्वर ने चाहा। इसके पहले मैं चटक हुआ जाऊं, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं। दूसरी बड़ी सभा में तब मैं वहां से एक्लोहोमा को पार जाऊंगा।
If something should happen to you or I before that time comes, if I should pass over the river into that land, or if you should pass over before that time into that land, do you feel the assurance tonight that we'll meet there in that place? If you do, raise up your hand and say, I feel the assurance in my heart.
Oh, amen.
God bless your heart. God bless you. If there's one here that doesn't feel the assurance that they would be there and would like to say, remember me, Brother Branham, that I will have that assurance, raise up your hand. I want to be there too. God bless you, lady. God bless you. Our Heavenly Father, we bring to you tonight this congregation. Every hand, as far as I know, was up. All but one person, some precious soul sitting back here, just a little weary whether they could cross over the land, or there's enough of real divine love in their heart and that precious woman's heart that she had come to that land and she is dying tonight. Would it pour her weary soul into the promised land of God? Father in heaven, as I have stood here at this pulpit and preached and sweated and cried and begged and persuaded, let me ask you once more, Lord. Let me ask for my sister back there. God, place within her heart tonight that divine love, that Holy Spirit of God, that peace that passes all understanding, that she would receive thy Spirit, be sealed away by the Holy Ghost until that day. I want to see her, Lord, when we cross over the bridge. If it's my privilege to cross, if that what you showed me is real, and I cross across there, I want to meet her there and see her run and grab me by the hand and say, my precious brother. It was that night that something told me to raise up my hand when you got through preaching on the book of Ephesus. I raised up my hand and something happened to me after that. Here I am. I'm young now forever. God grant it to that precious one. These who have raised their hands, that they have been sealed away by the Holy Ghost. The Spirit of God is upon them and they have received the Holy Ghost. They're sealed away with that godly love in their hearts. How we thank you for them. Realizing, Father, that out into the world these tapes will go. Many microphones are stretched across this pulpit, which means that tapes are being made, turning back there. The voice will be going into different lands across the world, around the world. 20 or 30 different nations will hear it. I pray for every person that hears this tape that hasn't got that hope of eternal life, that hasn't got the baptism of the Holy Spirit. May it come to their hearts sweetly. Grant it, Lord. And may I, if I never see them in this life, when I cross over into that land, may they run and grab me as I grab them, and they will be holler, precious brother, to one another. Say, I heard your tape on Ephesus, how that God predestinated us to eternal life. And it was on that tape that I received the voice of God and was sealed away by the Holy Ghost into the kingdom of God. Grant it, Father. Heal all that's sick and afflicted. Get glory into thyself, for we commit all this unto thee in all efforts. In the name of Jesus, thy Son. Amen. Is there any here that's sick and wants to have hands laid on to be prayed for? Would you raise your hands? All right. Would you walk quietly now to the altar right here and stand just a moment while Brother Neville comes with us? All this seems praying for the sick. This just seems like coming down to where you know where you're standing exactly. God knows all about this. When I hear that song, remember, if you all are living, when I go, play this for me. Only believe, remember, I'm not dead. I won't be very far from you listening at it. I can't die. Jesus gave me eternal life.
Amen.
Gonna raise me up at the last day. I'll see you. And if you go, I'll believe the same thing for you. I believe we'll see one another again. Look at this precious lady standing here with gray hair. You're Christian? Filled with His Spirit, waiting for Him coming. Just stand out here waiting for the boat to come along. Amen. Oh, sister.